نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے DQ 2020 پارہ نمبر 21 اس دعا اور امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی بھی توفیق دے اور ہم اس میں سے بہترین عمل کی باتیں اپنے لیے لے سکیں اور جو بات ہم خود اپنے لیے لیں اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کر سکیں۔ آج کے دور میں جس چیز کو ہم سامنے لے رہے ہیں وہ فتنے ہیں، تو فتنوں کے دور میں سے اس بارے میں جس پہ بات زیادہ ہوگی وہ ہے، سوچیے کیا انتظار ہوتا ہے آپ کو پارے کا، موضوع کیا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ جب ایک موضوع مل جاتا ہے تو ہمیں پورے پارے کا فوکس مل جاتا ہے۔ اتلو ما اوہیا، تلاوت کیجیے اس کی جو وحی کی گئی آپ کی طرف، یہ ہے پارے کا نام۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 کا پہلا لفظ، یعنی قرآن کا مزاج پڑھ کے سنانے کا ہے، لکھی ہوئی بات کلام نہیں ہوتی۔ تو آج اس بارے میں سے ہم دیکھیں گے لہو الحدیث کا فتنہ، دوسرے لفظوں میں کہہ لیجئے مس یوز آف سوشل میڈیا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال۔ یہ کیا ہے، یہ لفظ کہاں سے لیا گیا؟ تو تھیم آیت پارے کی آیت نمبر 6 سورۃ لقمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذہا ہزوا اولئک لہم عذاب مہین، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، ایسے لوگوں کے لیے سخت ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اس دور میں تو نظر بن حارث کا نام آتا ہے اس آیت کے ساتھ، یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جس نے رستم اور اسفنجیار کے قصے، کہانیاں، فکشن عربوں میں متعارف کیا تھا۔ جب وہ دیکھتا کہ کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو رہا ہے تو اس کو کچھ ایسی چیزوں میں ملوث کر دیتا کہ جس سے اس کا فوکس ٹوٹنے لگے، اور وہ کچھ لونڈیاں بھی تھیں، کچھ گانے بجانے والے آلات بھی تھے، اور کہہ لیجئے کلام دل فریب، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ تو لہو الحدیث کیا ہے؟ محو کرنے والی چیز، وہ چیز جو اپنے اندر اتنا کسی کو انڈلج کر لے، اتنا انوالو کر لے کہ نمازوں کے وقت آ کے چلے جائیں، اس بندے کو ہوش نہ ہو، اذانوں پہ اذانیں ہو رہی ہیں، وہ اس میں سے اپنے آپ کو باہر نکال ہی نہیں پا رہا۔ اور اسی طرح سے آج کے دور میں ہر وہ چیز ذہن میں لائیے کہ جو آپ کو نماز سے دور کر دے، اللہ کی یاد سے دور کر دے، قرآن سے دور کر دے۔ میرا یقین ہے کہ آپ کے ذہن میں اپنے بچے ہی آئیں گے، ہاں دیکھو فون ہاتھ میں پکڑے بیٹھے رہتے ہیں، فلاں بک کو پڑھتے رہ رہے ہیں، فلاں چینل پہ جا کر اپنی گپ شپ کر رہے ہیں، اور میں بلا رہی ہوں اور نہیں آ رہے۔ آپ بلائیں اور بچہ نہ آئے تو آپ کو غصہ آئے، جب آپ کا رب آپ کو پکارے اور ہم نہ اس کی دعوت پہ آئیں تو اس کو کیسا لگتا ہوگا؟ ماں بچے کی مثال کے ساتھ تو بہت ہی اچھی طرح سے بات سمجھ آ جاتی ہے۔ جو ہم اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کم از کم اتنا ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے میں دیکھ لیں، تو ہمیں یہ تو بہت ہی اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس دنیا میں آپ کا میرا آنا ایک بہت بڑے مقصد کی تعبیر ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کی اپنی عبادت اور اپنی بندگی کے لیے کیے، اور آپ کو مجھے خاص طور پہ امت مسلمہ کا فرد ہوتے ہوئے تو ایک بہت بڑا کام دیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، آپ پر میں اپنے لیے تو آئے بھی نہیں، ہماری زندگی کا مقصد فن اینڈ انٹرٹینمنٹ نہیں، بلکہ ہم سب اس دنیا میں کمرہ امتحان میں ہیں، اور کمرہ امتحان میں بیٹھا شخص کیا اس وقت وہ ایسی چیزوں میں مگن ہوگا کہ جو اس کو امتحان دینے سے روک لے؟ 3 گھنٹے کا بھگ سے اڑنا کیونکہ ہاتھ میں ایک ایسا گیجٹ آ گیا، بچہ اسی میں کھیلتا رہا، ریپلائز کر دوں، کمنٹس دے دوں، لوگوں کے کلکس گن لوں، اس بچے کا کل اینڈ پہ رزلٹ کیا ہوگا؟ بس اس بات کو سمجھ لیجئے، جس بندے کو اپنی زندگی کے مختصر ہونے کا یقین ہے، چند پوائنٹس بولوں گی آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یعنی جس انسان کو اپنی زندگی کے مختصر ہونے کا یقین ہے، دوسری بات ہے جس کو اس کے قیمتی ہونے کا یقین ہے، جس کو یہ یقین ہے کہ کل میں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ایک ایک بات کا جواب دینا ہے، बिल्कुल उसी मुलाजिम की तरह कि जिसको 100 रुपए दिए जाएं और आने पे उसने एक एक चीज़ का जवाब देना है, तो वो अपनी ज़िंदगी को किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं डालेगा कि जिससे ज़िंदगी की बेवक़ती हो। तो लाहवल हदीस हैं टाइम किलर्स, टाइम वेस्टर्स, मनी वेस्टर्स, स्किल्स वेस्टर्स। आज हमारे लाखों करोड़ों के कीमती बच्चे जिनमें इतनी स्किल्स थी, लेकिन वो लाहुल हदीस का शिकार हुए और आज ड्रग्स में चले गए, शराबी कबाबी बन गए। एक पाक साफ ज़िंदगी गुजारने के काबिल बच्चा लाहुल हदीस के नतीजे में जिना और बेहयाई से गुजरता गुजरता होमोसेक्सुअल बन गया। क्या आप मैं इस दर्द को समेट सकते हैं? क्या उम्मत के बच्चे मेरे आपके बच्चे नहीं हैं? क्या उम्मत की बेटियां आपकी मेरी बेटियां नहीं? आज एक तरफ तो यह है कि माँ बाप को अपने भी बच्चों का ज्यादा मलाल नहीं है, इल्ला माशाल्लाह, कहते क्या करें, फिर जो सब करते हैं उनको करना पड़ेगा। और एक तरफ कुछ लोग हैं जिनके सीने हर वक्त जलते ही रहते हैं और वो अपनी जुबानों से इस दर्द को उगलते ही रहते हैं कि लोगों, अगर आज हमने इस लाहौल हदीस को अपनी जिंदगियों से ना निकाला और सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल ना किया, तो इस रो में हमारी नस्लों की नस्लें, ज़ुर्रियत बह जाएगी और नतीजा वही होगा जो आज किसी हद तक सामने आ भी रहा है। तो एक ईमान वाले की ज़िंदगी में वेस्ट करने का टाइम ही नहीं होता। कल बच्चों के साथ बैठी थी, छोटे छोटे बच्चे, दिल चाहता कि वो मेरे लिए सदका जारिया बन जाए, तो मैं उनसे चंद बातें कर रही थी, तो जब बात हुई कि इस तरह टाइम वेस्टर्स, तो मेरे मुँह से स्पिल का लफ्ज़ निकल गया। तो कहने लगा कि जो भी उसने मुझे कहा, स्पिल खेलना गुनाह। फिर इस तरह की बात मैंने सोचा, उसमें क्या होता है, म्यूज़िक होता नहीं? कहने का नहीं, सिर्फ फाइटिंग होती है और किलिंग और टारगेट। तो फिर मैंने उसको भी यही दो चार जुमले बोले थे कि बेटा, मोमिन का टेस्ट बड़ा प्यारा होता है, उसको ऐसी चीज़ें अच्छी ही नहीं लगती कि जिसमें माइंड डिस्टर्ब हो। तो याद रखिए, दलील के मैदान में और कायल करने और माइल करने के अंदाज़ में अपने बच्चों को लाहुल हदीस से निकालिए। जब माँ बाप एक बामकसद ज़िंदगी बसर करते हैं तो बच्चों को भी पता होता है। और सोशल मीडिया में आज क्या आता है और क्या नहीं आता, आपको मुझसे ज़्यादा पता है। इस वक्त भी ये बात अब सोशल मीडिया के तहत ही मेरी आप सुन रहे हैं, और सोशल मीडिया में मुमकिन हद तक कोशिश की जाती है हर तरफ से ये कुरान की बारिश बरसाई जाए। तो यही सोशल मीडिया है कि जो लोग आपको अहसनुल हदीस से जोड़ रहा है, और यही सोशल मीडिया है जो आपको लाहुल हदीस का शिकार कर रहा है। इस्तेमाल आपका है, छुरी एक ही है, आप उससे फ्रूट काट लें या किसी की उंगली काट दें। तो अपने बच्चों को आपने और ख़ुद को भी सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल सिखाना है, और अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मुसलमान इस चीज़ में काफ़ी हद तक कोशिश करते दिख रहे हैं। अल्लाह करे कि हम खुद भी और इन चीज़ों को मुसलमान कर सकें, इस्लामाइजेशन करना है। आज मैं और आप अपने बच्चों के हाथों से फ़ोन नहीं ले सकते, इनके गैजेट इनको ऑक्सीजन मास्क की तरह प्यारे हैं और किसी हद तक हमें भी, सिर्फ तरजीहात का फ़र्क है ना। तो लिहाजा ज़िंदगी को बहुत सोच समझ के गुजारना है, सो सो के भी गुजार देंगे, रो रो के भी गुजार देंगे। और इस मामले में देखिए कि इन सारी चीज़ों, यानी लाहौल हदीस कह लीजिए या सोशल मीडिया, इसमें सबसे ज़्यादा हमारी आंखें लगती हैं, आई साइट। इसी में हमारे कान कुछ सुनते हैं, फिर दिल के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें आती हैं, फिर इसी तरह से आप देखिए कि ज़ुबानें कुछ गुनगुनाती हैं, ज़ुबानों पर बोझ पड़ता है। तो कितना इससे साइंटिफिकली नुकसान हो रहा है, वो बच्चे जो स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, और हम बड़े भी इवन, कितनी देर स्क्रीन के साथ हमारी आंखें टच करती हैं, हमारी आई साइट वीक होती है। और इसी तरह से जब इन चीज़ों में से गलत किस्म के पैगाम होंगे तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए फिर एक दुआ आज आपके लिए जो चूज़ की गई है वो बड़ी खूबसूरत दुआ है। अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफिनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंता, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्र वल फ़क्र, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाह के नबी की सिखाई हुई दुआ, जो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे साथी सुबह शाम पढ़ते होंगे। तीन तीन दफ़ा ये दुआ सुबह शाम पढ़ने का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया। देखिएगा दुआ क्या है, सेहतमंद रहने का नुस्खा है। तो जो इन चीज़ों के आफ्टर इफ़ेक्ट्स हमारे ऊपर आते हैं, वो चीज़ें जिसकी वजह से हम फिर बीमार भी होते हैं, छोटी छोटी उम्रों में बड़े बड़े ग्लासेस बच्चों की आंखों को लग जाते हैं, हेयरिंग एड लगाने पड़ते हैं, तो उनसे बचने की ये दुआ है। ए अल्लाह, मुझे मेरे जिस्म में आफियत दे, आमीन। ए अल्लाह, मुझे मेरे कानों में आफियत दे, ए अल्लाह, मुझे मेरी आंखों में आफियत दे, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। ऐ अल्लाह, मैं कुफ्र और फ़क्र से तेरी पनाह चाहता हूँ और अजाब कब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ। तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अबू दाऊद की रिवायत है 959 जिल 3। तो इस दुआ को अपना मामूल बना लीजिए। एक तो साइंटिफिकली जो बॉडी पे बोझ पड़ता है ज़्यादा ज़्यादा, अल्लाह ताला उससे बचाएगा। आंखों की बसारत आखिरी उम्र तक अल्लाह कायम रखेगा। समाज पे भी असर पड़ता है और जिस्म में भी जो तरह तरह की बीमारियां हैं, लेकिन इसके साथ साथ रूहानी तौर पे हमारी सेहतमंदी की दलील है। और आप देख रहे हैं कि कुफ्र और फ़क्र के साथ फिर अजाब कब्र, तीन चीज़ों से पनाह मांगी गई। इस दुआ को अपनी दुआओं का हिस्सा बना लीजिए। इंशाल्लाह ताला नागहानी बीमारियों और आफतों के मुकाबले में अल्लाह ताला आपकी मेरी मदद फरमाएंगे। फिर आज के लिए जो हदीस है वो क्या है कि जब कभी इंसान ना समझी में किसी के प्रेशर में आकर, या कह लीजिए कि पता ही नहीं था, या फिर कुछ भी वजह हो, किसी ऐसी महफिल में बैठ जाए, कोई ऐसी जगह उसकी कह लीजिए कि निशानियां लग जाएं, उसके आसार लग जाएं कि जहां कोई कीलो काल हुआ, कोई बुरी चीज़ देखी सुनी, तो उसके बाद एक दुआ मांग ले कि ताकि अल्लाह ताला उसके बुरे असरात से महफूज रखे। ये सिलसिला तो सहीहा की रिवायत है। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। हज़रत जुबैर बिन मुअत्तम रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ये कहा, ए अल्लाह तू पाक है अपनी तारीफ़ों के साथ, मैं गवाही देता हूँ कि तू ही माबूद बरहक है, मैं तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ और तेरी तरफ रुजू करता हूँ, जिसने ये कलेमात महफिल जिक्र के बाद कहे, यानी किसी भी जिक्र की महफिल थी, कोई भी बात थी, किसी भी महफिल के बाद कहे, तो ये इस जिक्र पर लगाई जाने वाली मुहर साबित होंगे। और जिसने बेहुदा और फजूल मजलिस के बाद कहे, तो ये इस मजलिस का कफ़ारा बन जाएंगे। तो इन दुआओं का इहतमाम कीजिए ताकि कुछ ना कुछ असरात हमारे जायल हो जाएं गलत चीज़ों को देखने सुनने और उनको बोलने के। पारे की झलकियाँ लेते हैं, ग्लिम्स। अल्लाह ताला की फरमा बरदारी करना सीखना है, अल्लाह ताला पर भरोसा करना और उसके लिए दीन को खालिस करना सीखेंगे। आखरत की फ़िक्र करनी है, अल्लाह ताला की सुबह शाम तस्बीह करनी है, अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर व फिक्र करना है, और सबसे बढ़ के ये है कि यकसू होकर अपना रुख दीन की तरफ फेर देना, यानी वी नीड टू बी फोकस्ड। और आज इस फोकस्ड होने की जितनी ज़रूरत है शायद कभी नहीं थी, क्योंकि इस वक्त चारों तरफ हमारे चीज़ें फैली हुई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। गुनाह करने वालों को गुनाह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत दिखती हैं और नेकियों के हरीस लोगों को नेकियों के बड़े मौके दिखते हैं। तो बस लोग ये सोच लेते हैं कि बहुत सारी नेकियों में हाथ डाल देना नेकी है। याद रखिए, यकसू होकर एक रुख पे चलने में कामयाबी है। ट्रेन को देख लीजिए, एक पटरी पे खड़ी है और चलती ही जा रही है, हर लम्हा मंजिल के करीब होगी। और अगर पटरी अपना रास्ता छोड़कर दूसरे पे और तीसरे पे और इधर से उधर जाए, तो या तो किसी खाई में गिरेगी या पहाड़ियों पे चढ़ जाएगी। ज़िंदगी में कामयाब होने का असूल, और ये मैं उन सब साथियों को कहूँगी कि माशाल्लाह जिनके दिलों में जज्बे उभर रहे हैं, और ख़ास पे दौरे कुरान, तो उस पर कह लीजिए कि कैटलिस्ट का काम करता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कोई बड़ा काम करना है, मुझे कुछ करना है। तो बस दफ़ा इसमें लोग ये सोच लेते हैं कि बहुत कुछ करना है। नहीं, बहुत कुछ करने वाले बड़े नहीं होते। अपनी स्किल, अपनी फील्ड, अपने लाइन ऑफ एक्शन में चलने वाले आगे जाते हैं। क्लर्क से सीए बनने के रास्ते में फोकस्ड होना होता है। तो हम इंशाल्लाह अल्लाह से भी दुआ करेंगे और सीखेंगे भी कि यकसू होकर अपना रुख दीन की तरफ कैसे फेरा जाता है। फिर इसी तरह अपना रुख सीधे दीन पर कायम करना, इल्म और ईमान में तरक्की करना, रब की हिदायत पर होना, अल्लाह ताला की तरफ रजू करने वाले के रास्ते की पैरवी करना, ये सब कैसे होता है? और फिर सब को पलटना तो अल्लाह की तरफ है, अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द करना है, दुनिया की ज़िंदगी के धोखों से बचना है, क्योंकि यही है जो हमारा फोकस बार बार हटा देती है, लोगों को बुरे अंजाम से खबरदार करना अम्बिया कराम का शुआर था, हमने भी इसी पे अमल करना है, अल्लाह ताला की आयात के ज़रिए नसीहत करना, लोगों की रहनुमाई करना, वही की पैरवी करना और अल्लाह ताला की नेमत को याद रखना। और सबसे बड़ी बात, लकद कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए बेहतरीन उसवे हसना बनाना, रोल मॉडल बनाना है, और अल्लाह ताला आज हमें इसकी तौफीक दे। तो चलिए देखते हैं पारे की आयतों को। सूरत अनकबूत है, 29 नंबर की सूरत है। आज हम 45 से शुरू करेंगे, 69 तक सूरत के अंत तक, और फिर उसके बाद अगली सूरतें भी इस बारे की हम पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। उत्लु मा ऊहिया इलैका मिनल किताबि वक़िमिस सलाह इन्नस सलात तन्हानिल फख्शाई वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यालमु मा तस्नऊन। जो किताब आपकी तरह वही की गई है इसे पढ़िए और नमाज कायम करें, यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। बेशक अल्लाह ताला का जिक्र बड़ी चीज़ है, जो कुछ तुम कर रहे हो इससे अल्लाह ताला खबरदार है। दो हुक्म हैं पारे के बिल्कुल आगाज़ में, एक तो क्या है उतलू और दूसरा है अकीम। अगर आप अरबिक टेक्स्ट को देख रहे हैं तो आपको बात वाज़े होगी। तिलावत कीजिए इस कुरान की इन आयतों की और नमाज़ें कायम कीजिए। क्यों कहा कि उतलू, आप पढ़िए, और अल्लाह हुक्म दे रहा नबी को? अल्लाह के नबी ख़ुद भी नहीं कह रहे कि मैं पढ़ता हूँ। वजह यह है कि कुरान पाक चूँकि अल्लाह का कलाम है, कलाम स्पीच होती है, डायलॉग होता है, तो लिखी हुई बात समझ नहीं आती। यानी यह आयत एक बहुत बड़ी दलील है कि हमें एक किताब लिखी हुई शक्ल में नहीं दी गई, जैसे कि हज़रत मूसा को तौरात तख्तियों पर लिख कर दे दी गई थी, कुरान भी दिया जाता नहीं। चूँकि बल हुआ कलामुल्लाह, तो कलाम को तो बोल के ही दिया लिया जाए तो फ़ायदा होता है। बस लोग कहते हैं कि नोट्स मिल जाएँ तो हम बस उससे फ़ायदा उठा लेंगे। आप इसी वर्ड्स को जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, एक एक लफ्ज़ आप किसी के साथ शेयर कर दें लिखे हुए, या ये स्लाइड्स ही पेश कर दें, जैसे कुछ लोग इसी को काट फाट कर पेश कर भी रहे हैं। मुझे बहुत ही दुख होता है जहाँ कभी मैं कोई फ़ोन से खींची हुई तस्वीर देखती हूँ टेढ़ी मेढ़ी, मुझे ऐसे लगता है कि अपनी कापियों के सफ़े फाड़ कर हम दूसरों को भी दिखा रहे हैं कि देखो कितना सस्ता इल्म हमें मिल रहा है। याद रखिएगा, एक एक लफ्ज़ लिखा हुआ दे दीजिए, आप इसी स्लाइड को लेकर एक एक लफ्ज़ वही बोल दें, और बाद में अगर आप इसी की ऑडियो को सुनें तो आपको फ़र्क महसूस होगा। कुरान का भी यही हाल है। हमारे घरों में कौन सी तफसीर नहीं थी, हमारे घरों में इस्लामिक बुक्स कौन सी नहीं थी, तर्जमे के कुरान नहीं थे। इंडो पाक कल्चर में तो आप देखिए कुछ मखसूस तफसीरें हर घर में मौजूद हैं। तब्दीली का भाई, उत्लुमा उही लई का मिनल किताब, जब सुना तो लिखिए। कुरान का मिजाज सुनने वाला है, सुनाने वाला है, ये लिखने पढ़ने से नहीं आता। वरना तो अल्लाह के नबी की ज़रूरत नहीं थी, जिब्राइल हर घर में जाकर एक एक मुसहफ छोड़ आते, बात ख़त्म, और थे भी वो लोग अरब, उनको हमारी तरह लफ्ज़ी तर्जमे के लिए इतनी मेहनत थोड़ी करनी पड़ती, जो माशाल्लाह आप लोग अब लफ्ज़ी तर्जमा सीखने के लिए कर रहे हैं। उन सब के लिए दुआएं हैं कि जो सबीलुल जन्ना 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और उनके लिए भी हैं जो अभी नियतें और इरादे कर रहे हैं। उनको तो पता भी नहीं कि उनकी ज़िंदगी का सबसे कीमती डॉक्यूमेंट ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बन जाएगा, एक दिन आएगा। मैं अक्सर अपने ऊपर भी लेकर सोचती थी शुरू शुरू में, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह आदत हो गई कि आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में जो सब फैसले किए या मेरे साथ जो फैसले हुए उसमें सबसे बेहतरीन फ़ैसला इस कुरान को पढ़ने का था, जो आज मुझे पढ़ाने पे अल्हम्दुलिल्लाह तैयार करता है। तो अगर आपका भी दिल करता है ना कि आप कुछ करें, इवन इस वक्त वो लोग जो कई जगह वॉलंटियर कर रहे हैं, बड़े इन हैं, बड़े बिजी हैं, उनको भी सबीलुल जन्ना करना पड़ेगा। क्यों? कि जब तक आप ख़ुद इस सारे मरहले से नहीं गुजरते, दूसरों को नहीं दे सकते। दूसरी चीज़ देखिए, अकीमिस्सलाह, नमाज। नमाज की एक शान इस आयत में दी गई, नस्सलात तन्हा अनिल फख्शाई वल मुनकर। ये है वो चीज़ जिस पे आज बात करने की ज़रूरत है कि नमाज तो बेहयाई और मुनकर से रोकती है। यानी जो नमाजी होगा वो फोहश नहीं देखेगा, वो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, वो लहवल हदीस में नहीं खोएगा। लेकिन आज तो हम कुछ और ही देखते हैं, लोग इवन 5 वक्त के नमाजी भी हैं लेकिन लघवियात और लहवियात में भी खोए हुए। एक तो एंटरटेनमेंट के नाम पे सोशल मीडिया से देखेंगे, लेकिन एक तो अपनी ज़िंदगियों में लाइव कॉन्सर्ट्स रखवाते हैं, महफिलें मुजरा बनती हैं, शादियों में गाने बजाने की बातें, ये क्या बात है? यानी सवाल लिखिए, आज हमारी नमाज हमें फुहश और मुनकर से क्यों नहीं रोकती? तो फ़र्क देख लीजिए, फ़र्क इस बात का है कि एक नमाज ज़िंदा नमाज होती है और एक बेरुख नमाज होती है। ज़िंदा नमाज में इखलास और खलूस होता है, खुशू और खुदू होता है, ज़िक्रुल्ला भी होता है और ताल्लुक बिल्ला भी होता है। इसके बरक्स बेरुख नमाजों में ना खुशू ना खुदू, अल्लाह से ताल्लुक और रब्ता नहीं, इंसान को पता ही नहीं चलता क्या कह रहा है। यानी ना तो वाला ज़िक्रुल्लाह ही अकबर है और ना अल्लाह ताला से कोई बात है, तो मुर्दे तो नहीं रोकते। जब नमाजें ज़िंदा होती हैं, ये हो नहीं सकता फुहश और मुनकर ज़िंदगी में आए। फिर अगर कभी पाँव फिसल भी जाए तो इंसान घर नहीं जाता, नबी के दरबार में आकर कहता, अल्लाह के नबी गुनाह हो गया, हद लगा दीजिए। और एक शख्स के बारे में जब आपके पास बात की गई कि देखिए नमाज भी पढ़ता है तो झूठ भी बोलता है, नमाज भी पढ़ता है तो गलत काम करता है, तो आपने क्या फरमाया था? फिक्र नहीं करो, एक वक्त आएगा इसकी नमाज इससे ये सब कुछ छुड़ा लेगी। उस दौर में तो लोग एक नमाज पढ़ के दिल की हालत में तब्दीली महसूस करते थे, आज हमारा क्या हाल है? मस्जिदें भी भर जाती हैं, तरावियां भी हैं, हज और उमरे पे जाने वालों की लाइनें भी हैं, जुमे में एक एक मस्जिद में दो दो जमातें भी होती हैं, लेकिन उसी तरह फुहश और मुनकर भी है। बाज़ दफ़ा तो रात को ईशा के बाद ही एक दो मूवी लेकर आते हैं, मर्द हज़रात के चले वीकेंड आ रहा है तो इंजॉय करते हैं, तो याद रखिए ये दुरुस्त नहीं है। वही वाक्या याद कीजिए, पीछे सुनाया था कि एक लड़का जो एक लड़की के पीछे लग गया और उसने कहा कि अगर हज़रत उमर के पीछे 8 दिन नमाज पढ़ाओ तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, और पहले दिन अगर 10 चक्कर थे तो दूसरे दिन 8 और फिर 7 और फिर लड़का ही गायब। काफ़ी अरसे के बाद जब सामना हुआ, कहा तुम वही हो जो मेरी गलियों के चक्कर लगाते थे, तुम्हारे हाल हुलिये को क्या हुआ? और वह नजरें झुका कर कहता है, देखो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करो, एक औरत का एक मर्द से यानी लड़के लड़की का ज़्यादा बात करना पसंदीदा नहीं। कहने लगी तुझे क्या हुआ, चेंज कैसे आई? कहने लगे कि हज़रत उमर के पीछे जो मैंने वो 8 दिन में नमाजें पढ़ी, मेरे दिल की दुनिया बदल गई। जब इमाम मुत्तकी होते हैं तो पीछे पढ़ने वाले मुक्तदी भी मुत्तकी होते हैं, तो ज़िंदा नमाज का एक असर होता है, क्या फहाशी बेहयाई और मुनकर से रोकती है, दिल से गुनाहों की रग़बत ख़त्म हो जाती है, क़ुर्ब इलाही मिलता है और अमल सालेह की रग़बत मिलती है। अपने ऊपर लीजिए, कितने साल हो गए नमाज़ पढ़ते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बात तो उनके लिए ना जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो बेचारे पढ़ाए जाते हैं या कभी कभी चखते हैं, उनका तो फिर हाल क्या होगा ये आप और मैं जाने। क्या फुहश निकला ज़िंदगी से, बेहयाई निकली, मुनकर निकला, दिल से गुनाहों की रग़बत ख़त्म हुई? ऐसा तो नहीं कि लोग हमें बड़े नेक समझते हैं हमारे ज़ाहरी हाल हुलिये और कुछ कामों को देखकर, और तन्हाई में और अकेले में जो चाहे देखे। बहुत बड़ी वईद है उस शख्स के लिए, क़यामत के दिन लोग उसको जहन्नुम में देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे कि अल्लाह ये तो बहुत नेक था, ये तो हमें भी नेकियों की दावत देता था, ये क्यों इधर आ गया? तो कहा जाएगा कि हाँ लोगों में बहुत अच्छी बातें करता था, तन्हाई में जब इसको गुनाह का मौका मिलता था तो उससे पीछे नहीं हटता था। तो अपनी और अपने बच्चों की नमाजें ज़िंदा कीजिए, वरना घर में मुर्दे फिर रहे हों तो उस घर में दिल नहीं लगता। वला तुजादिलु अहलल किताब, और अहले किताब के साथ बहस मुबाहसा न करो, मगर इस तरीके पर जो उम्दा हो, मगर इनके साथ जो इनमें जालिम है, और साफ ऐलान कर दो कि हमारा तो इस किताब पर भी ईमान है जो हम पर उतारी गई, और इस पर भी जो तुम पर उतारी गई, हमारा तुम्हारा माबूद एक ही है, हम सब इसी के हुक्म बरदार हैं। दोबारा दावत देने का असूल दिखा दिया गया कि अगर कभी किसी से बात करनी भी पड़े तो उसमें मुहज्जब अंदाज हो, बाजू उछालने वाला और लोगों को चैलेंज करने वाला अंदाज ना हो। और हमने इसी तरह आपकी तरफ अपनी किताब नाजिल फरमाई, पस जिन्हें हमने किताब दी है वो इस पर ईमान लाते हैं, और इन मुशरिकीन में से बाज इस पर ईमान रखते हैं, और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ कुफार ही करते हैं, आज तो मुसलमान भी करने लगे। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। इससे पहले तो आप कोई किताब पढ़ते न थे और न किसी किताब को अपने हाथ से लिखते थे कि ये बातिल परस्त लोग शक व शुबा में पढ़ते हैं, बल्कि ये कुरान तो रोशन आयते हैं जो अहले इल्म के सीनों में महफूज हैं। हमारी आयतों का मुनकिर सिवाय जालिमों के और कोई नहीं। आप मैंने कभी सोचा था ये किताब पढ़ेंगे? देखिए अल्लाह अपने नबी से फरमा रहे हैं कि ये किताब एक तोहफे के तौर पर आती है, गाइडेंस इज़ अ गिफ्ट, गाइडेंस को डिले करेंगे ये डिनाई हो जाएगी। तो आप भी कहिए कि अल्लाह मैंने भी नहीं सोचा था। कुरान पढ़ने से पहले वो साथी जो आज दफ़ा पहली दफ़ा कहीं भी नहीं कभी सुना, फर्स्ट टाइम दौरे कुरान कर रहे हैं, सच बताइए क्या आप कुरान को ऐसे ही समझते थे? मैं खुद अपना सोचूं, बहुत पीछे चली जाऊं जहनी तौर पे, तो जो चीज़ मुझे कुरान की तरफ लाई थी वो यही सोचती कि आखिर इसमें है क्या, साइंस है, केमिस्ट्री है, इसमें कोई क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई स्टोरीज हैं, ये है क्या? क्योंकि अक्सर लोग जो इसको पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी में चेंज आती है। तो ये रोशन आयते हैं आपके मेरे सीनों में, अल्लाह इनको जमा दे, महफूज कर दे। इन्होंने कहा इस पर कुछ निशानियाँ यानी मोजज़ात इसके रब की तरफ से क्यों नहीं उतारे गए? देखिए धान के पान, इतना बड़ा मोजज़ा कुरान की सूरत में इनके घरों में आ रहा था, फिर भी कहते थे कोई मोजज़ा तो दिखाइए। आप कह दीजिए निशानियां तो सब अल्लाह के पास है, मैं तो सिर्फ खुल्लम खुल्ला आगाह कर देने वाला हूँ। कहने ये काफ़ी नहीं कि हमने आप पर किताब नाजिल फरमाई जो इन पर पढ़ी जा रही है, इसमें रहमत भी है और नसीहत भी है इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। क्या आप इस किताब की रहमत को महसूस करते हैं? क्या आपको अपने घर में इसकी बरकत महसूस होती है? ये दुआ कीजिए कि अल्लाह इसकी बरकतें समेटने वाला बना दे। तो क्या देखा है 51 में कि मुझसे मांगते थे। हालांकि कुरान बहुत बड़ा मौजज़ा निशानी है। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के दो मौजज़े थे ना, यदे बैज़ा और असा, आज तो नहीं है ना। इवन अगर आज वो दोनों चीज़ें मौजूद भी हों तो कोई फ़ायदा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम आ भी जाएं तो भी वो इन दोनों को नहीं पकड़ेंगे, वो तो कुरान को पकड़ेंगे। इसके बरक्स आप देखिए कि कुरान 1400 साल से लेकर आज तक एक मौजज़ा। मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा क्या करता था? लोगों को खौफ दिलाता था, इतना बड़ा फन फैलाता हुआ अजदहा। कुरान भी कभी कभी डराता है, इसको पढ़कर भी डर लगता है, क्योंकि इंतज़ार है इसमें, मंजर, अल्लाह के नबी नज़ीर थे, ये सारी बातें कुरान में हैं। लेकिन मूसा का यदे बैज़ा एक रोशनी थी, उम्मीद थी, कह लीजिए कल ईमान उबैन अलखौफ वर्रिजा की कैफियत थी। आज ये कुरान भी मोमिनों के लिए रहमत है। क्या आपका दिल नहीं गवाही देता इस कुरान को पढ़ते सुनते वक्त कि वाकई ये मेरे मुर्दा दिल के अंदर एक रूह ला रहा है? आप अभी आगे चलते जाइए, आप खुद गवाह बनेंगे। एक खातून जो मुस्लिम हुई तो उनके कुछ जुमले ऐसे थे कि मेरा दिल करता है कि मैं शहर की सबसे ऊंची इमारत पे खड़ी हो जाऊं और लोगों को चीख चीख कर बताऊं कि ये किताब कितनी खूबसूरत है। वो तो एक नया नया ताल्लुक कायम होने वाली औरत थी ना। मैं आप तो बचपन से इस किताब की बातें और कुरान की बातें सुनते सुनाते आए, तो ये कुरान मोमिनों के लिए रहमत है और कुरान जिक्र है और नसीहत है। भूली हुई बातें याद आती हैं, रिमाइंडर है ये। आप अलार्म लगा लेते हैं ना किसी जगह जाना हो, या थिंग्स टू डू लिख कर रख लेते हैं, ये कुरान आपको बार बार मुझे भूली हुई बातें याद दिलाता है। खुद से जो वादे कर रहे हो सोच लो, जो नीयतें की हैं सोच लो, इरादे किए हैं सोच लो, ऐसा ना हो कि इधर रमज़ान ख़त्म उधर तुम ख़त्म। तो मुर्दा नमाज और कुरान से ताल्लुक़ जब कमज़ोर होता है तो लोग लग़वियात और लहवियात के फितनों में मुब्तला हो जाते हैं। आप इन दो चीज़ों को ज़िंदा कीजिए, कुरान और नमाज को, आप देखेंगे आपका दिल बेकारियात में लगेगा ही नहीं। और अगर किसी को इस बात का यकीन नहीं आता, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल, तो अल्लाह ताला कहते हैं, कुल कफा बिल्लाही बैनी व बैनकुम शहीदा। कह दीजिए कि मुझ में और तुम में अल्लाह ताला का गवाह होना काफ़ी है। वह आसमान और ज़मीन की हर चीज़ का आलिम है। जो लोग बातिल के मानने वाले हैं और अल्लाह ताला से कुफर करने वाले हैं, वो ज़बरदस्त नुकसान और घाटे में हैं। ये लोग आपसे अजाब की जल्दी कर रहे हैं। अगर मेरी तरफ से मुकर्रर किया हुआ वक्त ना होता तो अभी तक इनके पास अजाब आ चुका होता। ये यकीनी बात है कि अचानक इनकी बेखबरी में इनके पास अजाब आ पहुँचे। देखिए इस आयत को सामने रखे तो हमें भी खौफ आने लगता है कि अल्लाह ताला इतने गुनाहों के बावजूद फिर भी लोगों को मौके दिए जा रहे हैं। तो असल बात यह कि अल्लाह ताला के पास हर चीज़ का एक वक्त है। ज़रूरत इस बात की कि इंसान फिक्र करे, अपनी फिक्र करे। हम भी हर वक्त यही बातें करते रहते हैं, अच्छा फिर जो होना है हो जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं, नहीं, तुम अचानक पकड़े जाओगे और अल्लाह ताला आपको मुझे अपनी अचानक पकड़ से बचा ले। यस्ताजिलून कबिल अजाब, ये अजाब की जल्दी मचा रहे हैं। और तसल्ली रखें कि जहन्नुम काफिरों को घेर लेने वाली है। इस दिन इनके ऊपर तले से इन्हें अजाब ढांप रहा होगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब अपने बद आमाल का मजा चखो। ऐ मेरे ईमानदार बंदो, मेरी ज़मीन बहुत कुशादा है, बस तुम मेरी ही इबादत करो। यानी अगर किसी माहौल में, किसी जगह में, किसी घर में तुम अब अल्लाह के दीन पर अमल नहीं कर पा रहे तो फिक्र करो, निकलो उधर से। अल्लाह ने कोई तुम्हारे पांव तो नहीं बांधे हुए, लोग तुम्हें कितना को मजबूर कर सकते हैं। और अगर हिजरत के तकाजे निभाने मुश्किल लगें, हिजरत के रास्ते की सौगतें तुम्हारे कदम पकड़ लें, तो एक बहुत बड़ी हिजरत को याद कर लो जो बिल आखिर तुम, मैं, हम सब करने वाले हैं। और वो है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार मौत का मज़ा चखने वाला है। और तुम सब हमारी तरफ लौटाए जाओगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए, इन्हें यकीनन जन्नत के इन बाला खानों में जगह देंगे। सोचिएगा, जिनके नीचे चश्मे बह रहे होंगे, जहाँ वो हमेशा हमेश रहेंगे। नेक काम करने वालों का क्या ही अच्छा अजर है। कौन है वो लोग? अल्लज़ीन सबरू वला रब्बिहिम यतवक्कलून, जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। याद रखे सूरत अलनकबूत तकलीफ़ों और आजमाइशों के दौर की सूरत है। हर एक को घर घर में आजमाया जा रहा है, किसी को पत्थरों पर लिटाया जा रहा है, तो किसी को धमकियाँ मिल रही हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे वक्त में सहाबा कराम समेत हम सबको याद दिला रहे हैं कि मौत को याद रखो, ये दुनिया 4 दिन की है। आप देखिए कि जब हम दुनिया में रहते हुए अपने जाने की फिक्र करते हैं ना, तो दुनिया से और ख़ास तौर पर गलत चीज़ों से दिल उठता है, फिर लाहुल हदीस नहीं रहती, फिर अब सोशल मीडिया का रॉन्ग यूज़ नहीं करते। लौट कर अल्लाह की तरफ जाने का एहसास क्या तब्दीली लाता है इंसान में। एक जुमला लिखिए, जीने वालों को जाने की तैयारी करनी है। हम सारी ज़िंदगी जीने की तैयारियों में रहे और जाने का वक्त करीब आ गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, लज्जतों को तोड़ देने वाली को याद किया करो, यानी अल मौत। तो जिसको ये दो बातें याद रहेंगी, फिर वो लाहुल हदीस में नहीं पड़ेगा। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इस दुनिया में गिनती की सांसें लेकर आए हैं। लोगों के पास तो हमारी ज़िंदगी सालों में है ना, सालों को गिरे लगती हैं। आज आपकी सालगिरह और आज आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका ये वो, अल्लाह के हाँ मेरी आपकी ज़िंदगी सांसों में है। हर एक सांस के बाद फरिश्ता गिन लेता है कि इतनों में से इतने रह गए। तो क्या पता चला, ज़िंदगी में अगर संजीदगी नहीं, फितनों में पड़ चुके, लाहौल हदीस आ गया, तो उसका हल हिजरत है। हिजरत दो किस्म की होती है, एक ज़मीनी हिजरत है, जैसे कि अल्लाह के नबी और असहाब ने हबशा की तरफ भी की, और इसी तरह बाद में फिर आपने मदीना की तरफ भी की। आज भी दीन बचाने के लिए जो हिजरत करेगा वो हिजरत का दर्जा होगा, लेकिन रिस्क कमाने के लिए आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाते हैं, आपकी ये हिजरत अल्लाह के लिए नहीं होगी। ये तो आपकी रिस्क के लिए किसी औरत से शादी करने के लिए जाएंगे, पेपर वर्क है, पेपर मैरिज है, इमिग्रेशन है, वीज़ा लग जाए, ये हो जाए, तो फिर वो हिजरतें तो नहीं होती। लेकिन जो दूसरी उससे भी अहम हिजरत है, वो जहनी हिजरत होती है। ये इंसान गुनाहों से नेकियों की तरफ करता है, ये बिदात से सुन्नतों की तरफ करता है, ये शिर्क से निकल कर तौहीद की तरफ करता है, और आज इसकी ज़रूरत है। आप और मैं लाहुल हदीस से बचेंगे कैसे, जब हम जहनी हिजरत करेंगे। सोशल मीडिया को मिस यूज़ करने की बजाय उसका सही यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको जहनी हिजरत का अजर देगा। देखिए, अमूमन जब चीज़ें गलत चीज़ों के तौर पर इस्तेमाल हों, तो उनमें से उन लोगों को अल्लाह बहुत अजर देंगे जो उन्हीं चीज़ों का रुख बदलें और उनको नेकियों के लिए इस्तेमाल करें। और अगर हिजरत मुश्किल लगे, तो बड़ी हिजरत यानी मौत को याद कीजिए। गुनाहों से हिजरत मुश्किल लगने की वजह लाहवल हदीस है, तो इसी हिजरत को करने के बाद आप इसी को हसनुल हदीस में बदल लेंगे, और आप फिर उसी सारी स्किल्स को अपनी इस किताब की खिदमत में गुजार देंगे। फिर आप देखिए कि जन्नत के बाला खानों का जिक्र है। दुनिया में भी आप 5 स्टार से 6 स्टार और 7 स्टार के ख्वाब देखते हैं। जन्नत के स्टार्स कितने हैं? 100 स्टार हैं। जन्नतियों में से दर्जों के अतबार से देखें तो सबसे ऊपर का जो जन्नती है वो 100वें दर्जे की जन्नत में होगा, जो फिरदौस है। शर्त देखी है कि आप इस आयत में दिए हुए अमाल को नोट कर लीजिए। नंबर एक, ईमान लाना पड़ेगा, अमाल साले करना पड़ेंगे, सब्र और हिजरत के मरहलों से गुजरना पड़ेगा, और फिर अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह ताला पर तवक्कुल करना पड़ेगा। इन अमाल के बदले में जन्नत के बाला खाने मिलेंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तड़प और तलब लगा दे। वकाई मिंदा बतिल्ला तहमिलु रिज़्क़हा, और बहुत से जानवर हैं जो अपनी रोज़ी उठाए नहीं फिरते, इन सब को और तुम्हें भी अल्लाह ताला ही रोज़ी देता है, वो बड़ा ही सुनने वाला जानने वाला। क्या फैक्ट्रियां होती हैं जानवरों की, मिलें होती हैं, टैक्सियां होती हैं? ये उन सब साथियों के लिए जुमला है जो रोज़ी रोटी कमाने के नाम पर अल्लाह ताला की बात को पीछे डाले रखते हैं। आप देखिए कि जानवर भी खा के ही सोता है। आपने मैंने खा लिया तो क्या कमाल किया। तो ज़िंदगी सिर्फ रोज़ी रोटी कमाने का नाम नहीं, रिस्क हलाल कमाने का नाम है, और अल्लाह के दिए हुए काम और जिम्मेदारियों को निभाने का नाम है। और अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि ज़मीन व आसमान का खालिक और सूरज और चांद को काम में लगाने वाला कौन है, तो इनका जवाब यही होगा कि अल्लाह ताला। फिर किधर उल्टे जा रहे हैं, यानी आप देखिए कि कौन है सुबह उठकर सबको काम देता है। ये सूरज चांद किसके इशारों पर चल रहे हैं? तो क्या मैं और आप उस रब के इशारों पर नहीं चल सकते? असल में वहाँ लोगों को यकीन दिलाया जा रहा है कि ये मक्का वाले जो तुम पे जुल्म व सितम कर रहे हैं, तो याद रखो अल्लाह ताला इनको एक सेकंड में पकड़ सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको बदलने की, खुद को चेंज करने की मोहलत दी हुई है। अल्लाह यबसुतु रिज़्क़ा लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहू, अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसे चाहे फराख रोज़ी देता है और जिसे चाहे तंग। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। और अगर आप इनसे सवाल करें कि आसमान से पानी उतार कर ज़मीन को इसकी मौत के बाद ज़िंदा किसने किया, तो यकीनन इनका जवाब यही होगा कि अल्लाह ताला ने। आप कह दीजिए कि हर तारीफ अल्लाह ताला ही के लिए सजावार है यानी लायक है, बल्कि इनमें से अक्सर बेअक्ल हैं। रोज़ी की बात क्यों बार बार आ रही है? क्योंकि अमूमन जब लोग पिसे और दबे होते हैं तो कई जगह वो लाहुल हदीस में सिर्फ इस नाम पे पढ़ते हैं, क्या करें फिर कमाएं कैसे। मसलन अगर गलत चीज़ें हैं बिजनेस में, या अगर कोई स्टोर है और उसमें लॉटो है और गैमलिंग का सामान है और शराब भी है, कोई कहता है कि अल्लाह के बंदो ये तो नहीं करना काम, कहते हैं क्या करें फिर स्टोर नहीं चलता, फिर अगला स्टोर तो नहीं चलते, और फिर ये जो कन्वीनियंट स्टोर हैं यहाँ तो लोग आते ही शराब लेने और ये वो है। तो याद रखिए रोज़ी रोटी अल्लाह के हाथ में है, अगर हराम से भी ले रहे हैं तो याद रखिए कि मिलता वो भी अल्लाह के ज़रिए से ही है। ये अलग बात है कि आप खुद ज़िम्मेदार हैं अपनी इस कोशिश के। और बाकी रह गई अल्लाह को नाराज़ करके दुनिया का कुछ बड़े से बड़ा ले भी लीजिए, कितना को लेंगे, वमा हाजिहिल हयात दुनिया इल्ला लहवुन वलाइब, और दुनिया की ये ज़िंदगी तो महज खेल तमाशा है, अलबत्त आखिरत के घर की ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी है, काश ये जानते होते। बस जब ये लोग कश्तियों में सवार होते हैं तो अल्लाह ताला ही को पुकारते हैं, इसी के लिए इबादत को खालिस करके फिर जब वो इन्हें खुशकी की तरफ बचा लाता है तो इसी वक्त शिर्क करने लगते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, समंदरों में जाकर मस्तियाँ करना ये शिर्क है, फिल हुक्म अल्लाह की नाराज़गियों के काम करना। देखिए कि आखिरत की ज़िंदगी अबदी ज़िंदगी है, ये आपने देख लिया आयत 64 में। इसके बारक्स हदीस में आता है दुनिया मज़रतुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है, यानी यहाँ जो बीज डालेंगे आखिरत में वही फसल होगी। ये नहीं हो सकता कि यहाँ बीज आप करेलों के डालें और वहाँ आपको मीठे आम मिलें। तो दुनिया और इसका मालो मता आखिरत की अबदियत और इसकी शान शौकत के मुकाबले में गोया कि ना होने के बराबर है। समंदर में डाली हुई उंगली को लगा हुआ पानी दुनिया, और ना ख़त्म होने वाले समंदर को आखिरत समझिए तो अकलमंदी क्या है। लाहुल हदीस का शिकार लोगों का आखिरत में घाटा पाना, नुकसान पाना, इस बात से समझ लीजिए कितने ज़्यादा खसारे में होंगे वो लोग। फिर आप देखिए कि मक्का वालों की एक आदत थी कि जब खुश्कियों में होते तो अपने बुतों और बुज़ुर्गों को पुकारते, लेकिन जब समंदर में कश्तियाँ किसी तूफान की जद में आती या कुछ वहाँ थोड़ी सी मुश्किल आती तो कहते अब यहाँ सिर्फ अल्लाह को पुकारो, क्योंकि ये देवियाँ और बुत पानी में नहीं आ सकते। तो वहाँ जाकर खालिस होते, अल्लाह से दुआएं करते कि अल्लाह हमें बचा ले फिर हम ठीक हो जाएंगे। इकरमा का वाक्या पीछे भी आ चुका है, फिर अल्लाह ताला बचा देता था। तो जब वापस किनारों पे आते तो फिर आके दोबारा शिर करते, फिर ही उन्हीं के जाके चढ़ावे चढ़ाते। यही चीज़ इस आयत में बताई गई कि लाहुल हदीस में फंसे हुए लोग अमूमन मुश्किलात से बचने के बाद भी जाके चढ़ावे फिर अपने ही बुतों के नाम पे चढ़ाते हैं। आज भी ऐसा रंग रौनक वाला दीन आपको फिल्मों ड्रामों के जरिए नजर आता होगा, तो ये उसी दौर की यादें हैं जिसको अल्लाह ताला यहाँ देते हैं। फिर आप देखिए कि वो लोग चले पानी में जाकर तो अल्लाह को पुकारते थे, डरते थे, आजकल तो लोग कश्तियों में भी लहू लाइफ का सामान साथ लेकर जाते हैं। आप किसी क्रूज के साथ जाकर देख लीजिए, बहरी बेड़े में जाइए, खौफ आता है कि अल्लाह अगर इस धमाचौकड़ी की वजह से ये शिप जो है डूब गया तो हम भी डूबेंगे। लोग उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि अल्लाह को भूल जाते हैं, ज़रा सी कश्ती या शिप धचकोले खाए तो सबको अल्लाह याद आने लगता है, और अगर अल्लाह बचा कर खुशकी पर ले आए तो फिर अल्लाह को भूल जाते हैं। तो लहवल हदीस का नशा शराब के नशे से भी बुरा होता है, लोग इसके बगैर रह नहीं सकते। तो ये शिर्क फिल हुक्म है, अल्लाह ने जिस चीज़ से रोका वही करने लगे। आप सुनिए आयत 66 से, ऐसा लोग क्यों करते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ क्यों करते हैं, क्या उनका कसूर है कि वो कश्तियों में जाते हैं तो फिर जाकर शिर करने लगते हैं। ली यकफुरु बिमा आतैना हुम वली यतमत्तहू, ताकि हमारी दीवी नेमतों से मकरते रहें और बरतते रहें। अभी अभी इन्हें पता चल जाएगा, क्या ये नहीं देखते कि हमने हरम को अमन वाला बना दिया, हालांकि इसके इर्द गिर्द से लोग उचक लिए जाते हैं। क्या ये बातिल पर तो यकीन रखते हैं और अल्लाह ताला की नेमतों पर नाशुक्री करते हैं, इससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे या जब हक इसके पास आ जाए वो इसे झुटलाए। कैसे काफिरों का ठिकाना जहन्नुम न होगा। और अब सूरत की आखिरी आयतों में से खूबसूरत मजमून, वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहलमअल मुहसिनीन, और जो लोग हमारी राह में मुशक्क़तें बर्दाश्त करते हैं हम इन्हें अपनी राहें ज़रूर दिखाते हैं, कोशिशों के बदले मिलेंगे आज नहीं तो कल। ये अल्लाह की सुन्नत है, ये अल्लाह का फैसला है। आपको मुझे इस चीज़ को सामने रख कर इस सूरत के ऊपर गौर व फिक्र करना है। आप देखिए कि आज फितनों का दौर है ना, आप अल्लाह के रास्ते पे मेहनत कर रहे हैं, ज़ाहिर है कि इस वक्त सीख रहे हैं तो ये मेहनत कम है क्या, फोकस करना चाहते हैं, नींद आती होगी, कमर थकती होगी, नज़र घबरा जाती है, लिख नहीं पा रहे, अभी आधा लिखा तो मैं आगे बोलने लग गई, तो आपकी ये सारी मशक्क़तें अल्लाह कबूल करेगा। वो कहते हैं ना कि ढूंढने वालों को दुनिया नहीं देते हैं, ये नहीं कहते ढूंढने से तो अल्लाह भी मिलता है। तो सच कोशिश कीजिए, अल्लाह की तरफ है, करना क्या है, फितनों से अपने आप को बचाना है, अल्लाह की राह में मुजाहिदा करना है, मुत्तकी से मुहसिन बनना है। अल्लाह ताला अपनी तरफ आने वालों का रास्ता आसान कर देते हैं। अल्लाह ताला बेहतरीन कदरदान है और मुहसिनीन के साथ है। इसको भी ज़रा देखिए कि मुहसिन बनेंगे तभी अल्लाह का ये साथ मिलेगा ना। अब देखिए कि अगर आपकी मेरी ज़िंदगी मुहसिन के लेवल पे आ गई तो अल्लाह ताला की मायत आपको दिखेगी। सही मुस्लिम की रिवायत है 9197, अल्लाह की कसम दुनिया आखरत के सामने ऐसी है जैसे कोई तुम में से उंगली दरिया में डाले। और यहया ने कलमे की उंगली से इशारा किया दरिया में, यानी कि ये उंगली डाले जिसको अब शहादा की उंगली कहते हैं, फिर देखे तो कितनी तरी दरिया में से लाता है। तो जितना पानी उंगली में लगा रहता है वो गोया दुनिया है और वो दरिया आखरत है, बनिस्बत दुनिया को आखरत से। और चूंकि दुनिया फानी है और आखरत दायमी है, इस वास्ते इससे भी कम है। तो समझने की बात समझ गए, जितने लोग इन सारी चीज़ों पर गौर व फिक्र करते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें अपने रास्ते में जिद्दोजहद करने वाला बना दे। क्या सीखा 45 से 69 में? नंबर 1 इखलास, खालिस हो जाइए, अब तो बस गिनती के पारे हैं। अगर अभी भी दिल के बर्तन मैले ही रहे, गंदगी ना उतरी, तो शायद फिर हमें एक और साल इंतज़ार करना पड़े। खौफ और अल्लाह का जिक्र, यानी ये सीखा कि अल्लाह से डरना कैसे और उसका जिक्र करना है। फिर इसे गैर मुस्लिमों को दलाइल से कायल करने से पहले उनके दिलों को माइल कीजिए अपनी नरमी से। फिर तौहीद रबूबियत और अलूहियत की मिसालें देखी कि लोग अल्लाह को रब तो मानते हैं, इलाह नहीं मानते। यही शिर्क था मक्का वालों का, आज भी अक्सरियत का यही है। कब्र पे बैठे शख्स से पूछिए आसमान किसने बनाया, कहेंगे अल्लाह ने। रोज़ी कौन देता है? अल्लाह। तो इधर क्या कर रहे हो, ये सजदे और ये शुक्र और ये क्याम क्या है? कहते नहीं, ये बाबा जी हमें अल्लाह से लेके देते हैं। तो शिर्क रबूबियत में नहीं हुआ, अलूहियत में हुआ। जब इकरमा तूफान में घिर गए, अल्लाह ने उनके आंखों पे पड़ी हुई पट्टी खोल दी और फितरत की पुकार पे लब्बाई कहकर अल्लाह के नबी के पास आए और मुसलमान हो गए, तो ये वक्त खुश नसीबी का वक्त होता है कि किसी मुश्किल में डाल दिया जाए लेकिन बंदे का ईमान खिल जाए। और फिर एहसान के बदले एहसान के, इन अल्लाह लमाल मुहसिनीन। तो करना क्या है, चंद नसीहतें। पहली बात है कि लाहुल हदीस के फितने में मुबतला लोगों को चंद नसीहतों में से एक, कि दीन का इल्म सीखने में वक्त लगाइए। यही रास्ते, इसका और कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरा माल और मेरी सलाहियतें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, इसको अपना स्लोगन बनाइए। सोशल मीडिया को दीन सीखने और दीन फैलाने के लिए इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह, और इस पे अपने रिसोर्सेज लगाइए। दिन रात इन चीज़ों को इस्तेमाल करने में जो चीज़ें दरकार होती हैं उसको प्रोवाइड कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें कि एक वक्त होता है कि जब ज़मीन पे इमारतें बनती हैं, जैसे 2 साल से अल्हम्दुलिल्लाह जोहराबाद का प्रोजेक्ट चल रहा है और माशाल्लाह पूरी दुनिया से लोगों ने दिल खोल कर उसमें इस्तेमाल किया। आज खुले दिल से दावत दी जाती है कि जाकर एक एक बंदा देखे। आप में जो लोग पाकिस्तान जा सकते हैं वो जाएँ, एड्रेस लेकर यहाँ से जाएँ। मैं सबको कहती हूँ कि जाकर देखें अपने लगाए हुए पौधे, छोटी छोटी फसलें बनती भी देखें, आपका दिल खिलेगा। स्टिल वो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है, क्योंकि जाहरी बात है कि अब आगे उसमें और बहुत सारे मराहल हैं, लेकिन ये नहीं कि बड़ी बिल्डिंग नहीं खड़ी हुई तो काम नहीं हुआ। 2 साल से वहाँ क्लासेस हैं, माशाल्लाह हमारा ये बैच अभी पूरा हो रहा है अगस्त के लास्ट में, और नया बैच रेडी है। आप में से जो भी जोहराबाद के इर्द गिर्द रहते हैं, दोस्त हैं, साथी, बहनें, बेटियाँ, आप उनको उन लोकल नंबर्स पे कॉल करवा कर अगला साल का कोर्स, जो अभी फ़ौरन रमज़ान के बाद दोबारा शुरू हो रहा है, अभी पहला 1 माह के बाद ख़त्म होगा लेकिन अगले को शुरू कर रहे हैं। तो ये फसलें अगर नहीं लगेंगी तो बताइए चेंज कैसे आएगी? तो इस सब के ऊपर खर्च भी होता है, स्किल्स भी हैं, वक्त भी लगता है, और अल्लाह ताला जो लगा रहे हैं इसमें जान माल वक्त, उनकी सारी चीज़ों को कबूल भी करे। तो सोशल मीडिया पे भी जो कुछ आता जाता है इसको भी खैर का हिस्सा बनाना है। एक इमारत ज़मीन पे बनती है, एक नेट पे बनती है, एक एक इधर रूम खरीदना पड़ता है, एक उधर जगह लेनी पड़ती है। तो आज हम मुस्लिम्स के रिसोर्सेज का द बेस्ट यूज़ ये है कि हम दीन को सिखाने और सीखने के लिए अपने आप को लगा दें। फिर इसी तरह आप देखिए कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हुए अल्लाह की हदूद में रहना है। बस वह दीन का काम करते हुए भी लोग बेदीन हो जाते हैं, फिर क्या करें? तो एक जुमला याद रखिए, दूसरों की हिदायत के लिए खुद गुमराह नहीं होना। जो मेरी लिमिट्स है मैं उसी में रहूं, जो मैं कर सकती हूं अल्लाह मुझसे उसका ही पूछेगा, जो मेरे इख्तियार में नहीं अल्लाह ताला मुझे उसके बारे में नहीं पूछेगा। फिर इस तरह पूछिए कि मेरा वक्त किन कामों में गुजरता है। वक्त की चांदी अगर पिघल गई तो हाथ कुछ भी नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है 7088, क़यामत के दिन अहले दोज़ख में से एक शख्स को लाया जाएगा जो दुनियादारों में आसूदा तर और खुश ऐश था, यानी बहुत लग्जरियस लाइफ गुजारा था, बहुत मज़े में था। बस दोज़ख में एक बार गोता दिया जाएगा, फिर इससे पूछा जाएगा कि आदम के बेटे, क्या तूने कभी आराम देखा था दुनिया में, यानी कभी तेरी ज़िंदगी में कोई लग्जरी गुजरी, कोई रिलैक्सिंग टाइम गुजरा, क्या तुझ पर कभी चैन भी गुजरा था? वो कहेगा, अल्लाह की कसम, कभी नहीं ऐ मेरे रब। और अहले जन्नत से लाया जाएगा जो दुनिया में सबसे ज़्यादा सख्त तकलीफ़ में रहा, तो जन्नत में एक बार गोता दिया जाएगा, फिर इससे पूछा जाएगा, आदम के बेटे, तूने कभी तकलीफ़ भी देखी है, क्या तुझ में शिद्दत और रंज भी गुजरा था? वो कहेगा, अल्लाह की कसम, मुझे तो कभी तकलीफ़ नहीं गुजरी और मैंने तो कभी शिद्दत और सख्ती नहीं देखी। तो फिर उस आराम को क्या कहना जो जहन्नुम के एक गोते से भुला दिया जाए। और वो अल्लाह के रस्ते की मुश्किलात, क्या मुश्किलात हैं कि दूर से जन्नत की एक झलक उन मुश्किलात और उन ज़ख्मों पे फाहा बन जाए। अल्लाह ताला हमें अपने रास्तों में घुला दे, खपा दे और ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी की एक एक चीज़ इस रास्ते में खपा दे, हमारी जान, हमारा माल, हमारा खून, हमारा पसीना, हमारा वक्त और हमारी स्किल्स, खाली हाथ अल्लाह लेकर जाए, जब जाएँ दुनिया में एक टका पीछे अपने ना छोड़ कर जाएँ, सब कुछ इन्वेस्ट करके जाएँ ताकि हमारे बाद हमें वहाँ भी उसके प्रॉफिट मिलते जाएँ। तो सूरत अनकबूत के बाद सूरत रूम है, 30th नंबर की सूरत, 60 आयात हैं। रूम उस दौर की एक सुपर पावर थी, मक्का वालों की हमदर्दियाँ एक कौम के साथ थी, मुसलमानों की एक और के साथ थी, हालात बिल्कुल एडवर्स थे, लेकिन अल्लाह के नबी के ज़रिए जब ये आयतें उतरी तो एक प्रिडिक्शन है, एक पेशन गोई कि जो बिल्कुल मनवन सच साबित हुई, उसी का जिक्र है। और सूरत रोम इस बात की दलील है कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से है और नबी सल्लम अपनी ज़ुबान से जो बात कहते थे वो वही की रोशनी में होती थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, गुलिबतिर रूम। हरूफ मुकत्तात, रूमी मغلوب हो गए हैं नज़दीक की ज़मीन पर और वो मغلوب होने के बाद अनकरीब ग़ालिब आ जाएंगे, चंद साल में ही, इससे पहले और इसके बाद भी इख्तियार तो अल्लाह ताला ही का है। इस रोज़ मुसलमान शादमां होंगे। और वाकई जिस दिन ये खुशखबरी मिली उस दिन मुसलमान बदर से फतह याब होकर आ रहे थे। अल्लाह की मदद से वो जिसकी चाहता है मदद करता है, असल गालिब और मेहरबान वही है, अल्लाह का वादा है, अल्लाह ताला अपने वादे का खिलाफ नहीं करता। लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते, क्या नहीं जानते, एक तो ये नहीं जानते ना कि अल्लाह के वादे सच्चे हैं, एक और बात भी नहीं जानते, और वो क्या कि ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में बिल्कुल खोटी है। यालमून ज़ाहिरुम मिनल हयाति दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून, ये नहीं पता लोगों को, वो तो सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी के जाहिर को ही जानते हैं और आखिरत से बिल्कुल बेखबर हैं। क्या इन लोगों ने अपने दिल में ये गौर नहीं किया कि अल्लाह ताला ने आसमानों को और ज़मीन को और इनके दरमियान जो कुछ है सब को बेहतरीन करीने से मुकर्रर वक्त तक के लिए ही पैदा किया है? हाँ, अक्सर लोग यकीनन अपने रब की मुलाकात के मुनकिर हैं। तो क्या आज आप और मैं ज़ाहरी दुनिया के पीछे तो नहीं खो रहे? क्या उन्होंने ज़मीन में चल फिर कर ये नहीं देखा कि इनसे पहले लोगों का अंजाम कैसा बुरा हुआ? वो इनसे ज़्यादा तवाना और ताकतवर थे और उन्होंने भी ज़मीन बोई जोती थी और इनसे ज़्यादा आबाद की थी, और इनके पास इनके रसूल रोशन दलाइल लेकर आए थे। ये तो नामुमकिन था कि अल्लाह ताला इन पर जुल्म करता, लेकिन दरअसल वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। याद रखिए, आखिरत फरामोशी, खुद पे जुल्म है। दुनिया के एंकर भी बन जाइए, सारी दुनिया को मसख़र कर लीजिए, लेकिन अगर वहाँ जाकर आपकी कीमत ना पड़ी तो नुकसान आपका होगा। सिलसिला सहीहा की रिवायत है 2339, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दुनिया तलब की इसने अपनी आखिरत को नुकसान पहुँचाया, और जिसने आखिरत का मुतालबा किया इसने अपनी दुनिया को नुकसान दिया। बस तुम बाकी रहने वाली ज़िंदगी की खातिर फना होने वाली दुनिया का नुकसान होने दो। क्या पता चला कि अगर तकाबुल भी आ जाए ना दोनों जगह, तो फिर आखिरत को ले लो। देखिए, जब आप दुनिया थोड़ी सी भी छोड़ते हैं ना, अल्लाह इनाम में और तोहफे में आपको बहुत कुछ और देने लग जाता है। लेकिन बात यह है कि हमें रिस्क लेते हुए डर लगता है। हम दुनिया का रिस्क लेने को तैयार हो जाते हैं, हम दीन के नाम पर रिस्क लेने को तैयार नहीं होते। तो क्या पता चला कि जब तकाबुल में दोनों चीज़ें हों तो फिर आप फैसले कीजिए आखिरत के लिए। क्या आपको लॉकडाउन ने और इस सारे सेटअप ने जो पिछले दिनों से चल रहा है ये नहीं सिखा दिया? पेट पे पत्थर बांध लीजिए, थोड़ा खा लीजिए, थोड़े कपड़े बना लीजिए, लेस सोशलाइजिंग कर लीजिए, लेकिन अपने लिए सदका जारिया के बड़े बड़े अकाउंट्स खोल कर जाइए। गुजारा हो गया ना, आगे भी हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ये जो फरमाते हैं आयत 9 में कि अल्लाह ताला ने इन पर जुल्म नहीं किया मगर वो खुद अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे, तो ये कब होता है, यानी ये कैफियत कब होती है? तो नोट कीजिए कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ हक के साथ यानी बा मकसद बनाई है, लेकिन जब लोग मकसद हयात भूल जाते हैं तो खुद पर जुल्म करते हैं और लाहुल हदीस के फितनों में मुबतला होकर आखरत को भूल जाना खुद पर जुल्म करना है। अल्लाह ने तो नहीं कहा था, लेकिन बंदों ने खुद अपने हक में जुल्म को बर्दाश्त किया। तो ज़िंदगी का रुख बदलने की ज़रूरत है। सुम्मा का नाक़िबत अल्लसीना असा, फिर आखिर बुरा करने वालों का बहुत ही बुरा अंजाम हुआ, इसलिए कि वो अल्लाह ताला की आयतों को झुटलाते थे और इनकी हंसी उड़ाते थे। अल्लाह ताला ही मखलूक की इब्तिदा करता है, फिर वही इसे दोबारा पैदा करेगा, फिर तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है और जिस दिन क़यामत कायम होगी तो गुनाहगार हैरत ज़दा रह जाएंगे और इनके तमाम तर शरीकों में से एक भी इनका सिफारशी न होगा और ख़ुद ये भी अपने शरीकों के मुनकर हो जाएंगे। और जिस दिन क़यामत कायम होगी इस दिन जमातें अलग अलग हो जाएंगी। सोचिए ज़रा, आज तो बहुत इत्तेहाद है ना आपस में गलत कामों वालों का। उस दिन या तफर्रकून फ़ामल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात, बस जो लोग ईमान ला कर नेक आमाल करते रहे वो तो जन्नत में खुश व खुर्रम कर दिए जाएंगे। ए अल्लाह हमें भी इन्हीं में कर दे। अपने लिए दुआ कीजिए, आज दुआ करेंगे, कल कोशिश करेंगे, परसों हमारी दुआएं और कोशिशों के बदले में हम जन्नत में होंगे। क्या हसीन समा होगा। इसके बरक्स वामल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना, और जिन्होंने कुफर किया था और हमारी आयतों को और आखरत की मुलाकात को झूठा ठहराया था, वो सब अजाब में पकड़ कर हाजिर किए जाएंगे। कब तक? वो कहते ना, 100 दिन चोर के, एक दिन शाह का। एक दिन तो बंदा पकड़ा ही जाता है, बकरी कहाँ कहाँ फिरेगी, फिर वो बकरी बंधेगी। करो क्या, फसुबहान अल्लाह ही न तुम सू न वही न तुस्बिहून, फस अल्लाह तला की तस्बीह किया करो जब के तुम शाम करो और जब सुबह करो, यानी सुबह शाम के अस्कार भी करो और सुबह शाम की नमाजें भी अदा करो, इसलिए कि वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दी वशियौ वही न तुस्खिरून, तमाम तारीफों के लायक आसमान और ज़मीन में सिर्फ वही है। तीसरे पहर को और जोहर के वक्त भी इसकी पाकी इसकी बयान करो, 5 नमाजों के औकात इशारतन। वही जिंदा को मुर्दा से और मुर्दा को जिंदा से निकालता है और वही जमीन को इसकी मौत के बाद जिंदा करता है, इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे। कब्रों से निकलने को याद कर लें तो जिंदगी का रुख बदल जाए। अल्लाह तआला की निशानियों में से है कि इसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर अब इंसान बनकर चलते फिरते फैल रहे हो। अब यहाँ से देखिए निशानियाँ हैं, गिनते जाइए कितनी खूबसूरत निशानी है, और निशानी क्या होती है जिसको देखकर अब याद आ जाए। साइन बोर्ड, नॉर्वेजियन में कहेंगे तो शिल्ट, माइलस्टोन, कहीं भी जा रहे रास्ते में उस शहर के माइलस्टोन आते जाएंगे, आप समझ जाते हैं कि मैं सीधे रास्ते पर जा रही हूँ। हर आयत, 3 किस्म की आयतें हैं अमूमन, कौनी, कुरानी और अनफुस, कायनात में फैली हुई निशानियाँ जिस पे अभी गौर व फिक्र कराया जा रहा है। कुरान पाक की वो आयतें जो हम इस वक्त अदा कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं सूरत रूम की आयात में, और इसी तरह आपकी मेरी ज़िंदगी में होने वाले वाक़यात, अच्छे या बुरे, कभी अचानक खुशी मिल जाती है, कभी शर मिल जाता है, तो उन सारी निशानियों को एक एक करते हुए गिनते जाइए। हर निशानी आपको एंड पे अल्लाह ताला के घर का पता देगी और आप सबीलुल जन्ना पे चलते चलते जन्नत में पहुंच जाएंगे। एक आयत भी मिस कर दी तो हो सकता है कि कहीं डायरेक्शन रॉन्ग ना हो। अल्लाह की निशानियों में से कि इसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, ये मिट्टी फिर रही है इर्द गिर्द, कितना हुसन दे दिया अल्लाह ने मिट्टी को, बोलती खाती पीती रोती धोती स्मेल करती हुई मिट्टी है। बच्चे को देखें और मिट्टी को सोचें तो आपको पता चलेगा कि मिट्टी का ये गुड्डा कितने प्यारे एक्शंस रखता है। अब इंसान बनकर चलते फिरते हो और उसकी निशानियों में से है कि तुम्हारी ही जिन्स से बीवियां पैदा की ताकि तुम इनसे आराम पाओ। तुम्हारी जिन्स है, सेम जिन्स नहीं है। यानी सेम जेंडर नहीं दिया अल्लाह ने कि लड़का लड़के से शादी कर ले और औरत औरत से कर ले, सेम स्पीशी। सोचिए ज़रा, मर्द की शादी और साथ उसके बंदरिया बैठी हो, और औरत की शादी और पहलू में घोड़ा हो, कैसा लगे? इंसान तो उनसे है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला की ये चॉइस भी पसंद ना आई। कहाँ इंसान ने जाके मुंह मारा कि इंसान की बजाय जानवरों पे पड़ गया, जानवरों से बस पूरी करने लग गया। इससे भी बड़ा इंसान अपने आप को बेइज्जत कैसे करे? और फिर बीवियाँ इसलिए दी ताकि तुम इनसे आराम पाओ। इसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और हमदर्दी पैदा कर दी, मवद्दत और रहमत, मोहब्बत इंटीमेसी, जवानी की मोहब्बत, नई नई शादी के जज्बात, और हमदर्दी है बुढ़ापा, जब कशिश नहीं रही, जब कमर कमरा बन गई, जब वो एक नाजुक दुबली पतली लड़की से एक भारी भरकम औरत में ढल गई। तब ये ना कहो कि मेरा दिल भर गया, निकाल दो इसको, अब उसकी दवाइयाँ उसके खर्चे नहीं बर्दाश्त होते। तब इस बूढ़ी पे रहम करो कि जवान तुम भी नहीं हो। यानी इस्लाम ने सिर्फ आई लव यू के बेस पे घर नहीं बसाए, लव एट फर्स्ट साइट और डाइवोर्स एट अदर साइट। बस पहले साथ रह रहे थे तो लिविंग टुगेदर था तो बड़े खुश थे, अब शादी की तो एक साल के बाद पलट कर दोनों ही इधर उधर हो गए। इस्लाम जीने की और जोड़ों को साथ रहने की कई खूबसूरत वजूहात देता है, और इसमें एक मवद्दत वुद है, इंटीमेसी है, लव है, रोमांस है। इसी से पता चलता है कि शोहर बीवी में रोमांस होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, हमदर्दी होनी चाहिए। एक लड़की गैर लड़के के साथ ज़रा सी हरकत करे तो वो नाज़ेबा हरकत होगी, शोहर के साथ जो भी हरकत करेगी एक लड़की, ना किसी को एतराज़ होगा ना कोई इसको बुरा कहेगा। निकाह का बंधन बांध कर अल्लाह ने औरत मर्द को ना सिर्फ यह है कि गुनाह से बचाया, बल्कि नेकियां कमाने का मौका दिया, क्योंकि यकीनन गौर व फिक्र करने वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। क्या निशानियां? गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तो ज़रा सा मियाँ बीवी के रिश्ते पे गौर व फिक्र करते हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया के थ्रू शोहर बीवी का रिश्ता फ्लूट किया, सारी फिल्म रोमांस पे चलती है, लड़का लड़की हीरो हीरोइन, और उसमें दुश्मन है विलन, और विलन अक्सर लड़की का बाप है जो कहता है ये शादी हो नहीं सकती। और आप एक जवान बच्चे से पूछिए तो वो कहेगा कि लड़की का बाप तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो रास्ते का रोड़ा है। और सारी फिल्म में नाजायज़ मोहब्बत 5-6 गानों के साथ सेट करके दिखाई, और या तो शादी हुई तो फिल्म ख़त्म, यानी देर इज़ नो लव आफ्टर मैरिज। वो कहते हैं ना, मरने के बाद जी उठने का तसव्वुर मिट गया था, आज हमारे यहाँ भी शादी के बाद का रोमांस हमारे बच्चों के दिमाग में नहीं आता। वो कहते हैं मियाँ बीवी भी एक साथ बैठ सकते हैं, वो भी खाना खा सकते हैं एक प्लेट में, कहेंगे ये क्या छिछोरी हरकतें करें। कोई शौहर अपनी बीवी का हाथ पकड़ ले ज़रा, फिर देखिए अम्मी अब्बा और भाई बहनों के तेवर, क्योंकि सीखा ही नहीं है, हमने फिल्मों से सीखा रोमांस करना। कुरान कहता है मवद्दतन व रहमा, तीन चीज़ें अगर आप इस रिश्ते में देखिए, सबसे पहले है सुकून, और यहाँ इलैहा के अंदर ज़मीर चूँकि मुअन्नस किया है तो इसका क्रेडिट औरत को दिया जा रहा है, हालांकि मर्द भी घर के सुकून में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। लेकिन चूंकि हम ख़वातीन, अब क्या करें, हम यहाँ बैठ के मर्दों की बातें डिस्कस करें और लड़ाइयाँ लगवाऊँ घरों में, तो मैं तो बीवियों से ही कहूँगी, अक्लमंद मर्द तो खुद ही समझ जाते हैं। और यकीन कीजिए, प्ले योर पार्ट, अपना हिस्सा डालिए, अपनी गलतियों को देखिए, सवाल कीजिए घर के बेसकून होने में मेरा कितना हाथ है। जो घर अपसेट होगा, डिस्टर्ब होम होगा, चीज़ें मिलेंगी नहीं, मियाँ का एक मोज़ा मिल गया, दूसरा मिल ही नहीं रहा, घर से आने के बाद जाने के बाद के बीच में कितनी दफ़ा ठोकरें लगी, बच्चों के खिलौने पड़े हैं, क्या घर सुकून वाला होगा? तो बीवी को घर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो सुकून के लिए लेनी है वो घर को ऑर्गेनाइज करना, घर साफ सुथरा हो, मियाँ की चीज़ें समेटी हुई हों, उनको वक्त से पहले चीज़ मिल जाए। बीवी के अंदर अल्लाह ने एक सेंसर लगाया होना चाहिए। आज जो घरों के टूटने की बहुत बड़ी वजह है ना, बीवी सुकून बख्श नहीं रही। देखिए, दुनिया में पहला रिश्ता जो कायम हुआ शोहर बीवी का था, आदम और हव्वा को भाई बहन नहीं बनाया, इससे इस रिश्ते की अहमियत देखिए। फिर अल्लाह तआला कैसे मिट्टी में जज्बात डाल देते हैं, मवद्दत, जवान होते ही बच्चे के अंदर वो कुछ जज्बे आते हैं जिसको हमारी जुबान में पर पुर्जे कहते हैं, जी ये बड़े पर पुर्जे दिखा रहे हैं, उसी वक्त ही पर पुर्जों को कई रुख दे दीजिए, आप नहीं करेंगे तो वो छुपके करेंगे। आज छुपी हुई दोस्तियाँ कौन करता है, वो कहते हैं हम तो ओपन कर रहे हैं, आप क्यों रोकती हैं हमें? इस्लाम ने तो एहदान से रोका, और वो छुपी दोस्ती थी, देखिए मेरी सारी दोस्तों को पता है आई एम इन लव विद हिम, और वो दिल और मोहब्बत और हाथ जड़े जो सोशल मीडिया ने आज कहीं सेल्फी कल्चर में और कहीं प्रोफाइल पिक्चर्स में और कहीं टिकटॉक शो में और कहीं स्नैपचैट में सारी दुनिया को दिखाते फिरते हैं कि हाँ आई एम विथ हर, आई एम विथ हिम, फिर अब इसको क्या करें, ये बेहयाई कैसे खत्म होगी? वक्त पे शादियां कीजिए। निकाह से बाहर का ताल्लुक खयानत है, आने वाले शोहर से भी, और अगर जिससे शादी हो भी गई अगर बाद में, तो वो भी ताने देगा, तू तो मेरे साथ पहले भी ऐसी थी। हालांकि यही ताल्लुक शादी के बाद कीजिए तो ऐन इबादत है। अल्लाह के नबी ने कहा, तुम में से कोई शोहर अपनी बीवी के पास आता है, इबादत है, अजर मिलता है। साहबा को बड़ी हैरत हुई, अल्लाह के नबी हम तो अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। तो कहा, अगर गलत जगह पे करोगे, हराम तरीके से करोगे तो गुनाह नहीं होगा? तो तुमने तो हराम को हलाल में बदला। तो शोहर बीवी का ये इंटीमेसी का ताल्लुक भी इबादत है। बीवी को जो इसमें अपने लिए हिस्सा डालना ना, वो है, एक लफ्ज में बोल देती हूँ, मिजाज शनास हो जाए। जो बीवियां अपने शोहरों के मिजाज समझ जाती हैं, बस उनके शोहरों का रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में आता है। बीवी जब मर्द से 10-15 मिनट पहले ही आगे सोच लेती है कि इसके बाद ये क्या करेंगे, शोहर के गुस्से को पहचानने, उनके मूड को पहचानने, इस वक्त शोहर क्या चाहते हैं, वो काम करना चाह रहे हैं, आप सर पे सवार हैं उनके, मेरे से बातें करें ना, मुझे टाइम दें ना, बेकार बात है, और वो गुस्से में पड़े हुए और आप आगे से उनको हंस हंस के दिखा रही हैं, तो भी बुरा लगेगा उनको। यानी आप देखिए, एक थर्मोस्टेट होता है ना, उसको कंट्रोल करते हैं तो टेम्परेचर सही रहता है ना, बीवी के हाथ में शोहर का थर्मोस्टेट होता है। आप इंटीमेसी शो कीजिए, आप उसको आई लव यू बोलिए, आप उसको टेक्स्ट कीजिए, आई मिस यू का टेक्स्ट कब किया आपने अपने शोहर को? आप कहेंगे मैंने किया, उसने फ़ौरन जॉब छोड़ के आ जाना है, अब मैं क्या करूँ, जॉब चली जाएगी। देखिए, अकल सीखिए, समझ सीखिए, किस वक्त किस मूड की बात है, किस वक्त किस हाल हुलिये में सामने आने की जरूरत है। ये चीज़ें होंगी ना तो घरों में सुकून होगा। 90% घरों में झगड़े की वजह शोहर बीवी का एक दूसरे से मुतमईन ना होना है। ये जिनसी कशिश तो बात की बात है, इससे पहले इंटीमेसी होती है। फिल्मों में हीरो हीरोइन फूल देते लेते देखते हैं, आपने कब फूल दिया अपनी बीवी को, और आपने कब फूल दिया अपने शोहर को, आपने कब उनको आई लव यू कहकर भेजा? गुस्सा तो आएगा। देखिए, इंसान अपने इर्द गिर्द मोहब्बत ढूंढता है, बच्चा माँ से ढूंढता है, बड़ा होता है तो दोस्तों से मांगता है, जवान होने पे वो जब मोहब्बत मांगता है वो निकाह के बाद मिलती है। अल्लाह ने कहा निकाह करो, इसको मोहब्बत मिल जाएगी। तो लिहाजा एक्सप्रेशनस होइए, जज्बातियत बुरी चीज़ है लेकिन जज्बात खूबसूरत होते हैं। आप सरप्राइज गिफ्ट दीजिए, मुस्कुरा कर बात करें, लिखें, अच्छी बातें करें, कुछ जोक बनाएं। बीवी में जितनी जॉलीनेस होगी मर्द उतना खुश होगा। आप कभी खाने में उनके पास लॉलीपॉप रख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कभी आप उनको कुछ कह दीजिए, तो एक इंसान घर के अंदर आकर ये ना महसूस करे कि मैं किसी जेल में या हॉस्टल में आ गया हूँ। ये ना कीजिए, यह ना कीजिए, पाँव उठाइए, जूती उठाइए, अपने गन डाल दिया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए, जन्नत मिले जाने वाले अमाल में से कि एक औरत फ़राइज़ पूरे करके अपने शौहर को राज़ी कर ले। शर्त यह है कि वो शौहर भी अल्लाह को राज़ी करने वाला हो, ये ना कि वो उसे गलत मुतालबे करे। तो लिहाजा अपने शौहर को सुकून दीजिए, अच्छा खाना पकाकर उसके पेट को सुकून दीजिए, खुद साफ सुथरे रहकर उसकी निगाहों को सुकून दीजिए, किसी और के शौहर से कंपेयर ना करें। मर्द तो बर्दाश्त ही नहीं करता, उसमें इतनी अना होती, आप कह के तो देखें कि मेरी बहन का शौहर ऐसा और मेरी दोस्त का ऐसा। औरत तो बर्दाश्त करती है 100 बातें, उसके तो मिजाज में है, मर्द नहीं बर्दाश्त करता। तभी तो फिर 2 शोहरों की इजाज़त नहीं दी औरत को। मर्द कर ले 4 शादियां तो कोई बात नहीं, बीवी फिर भी बर्दाश्त करेगी, क्योंकि औरत के मिजाज में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अपनी बेटियों को सिखाइए बी फ्लेक्सिबल, उनको सिखाइए सॉफ्ट स्किल्स, उनको ओवर एक्सपेक्टेशन से निकालिए। मीडिया ने एक बहुत बड़ा धोखा दे दिया लोगों को, ओवर एक्सपेक्टेशन, सजी संवरी, जूड़ा किए हुए, लिपस्टिक लगाई हुई, और बहुत ही नखरे करती, आंखें पलके झपकाती हुई बीवियाँ कहाँ होती हैं आज, और वो कहाँ है शौहर जो पीछे पीछे भागते फिरे और आपको चाय की प्याली खिड़की में से मुंह निकाल कर पेश करें। जिस घर में ये होने लगे, बाकी लोगों ने वैसे ही भाग जाना है कि इनको हो क्या गया। एक दौर था, लोग कहते थे सरताज, किसके सर पे रखा होता है ये ताज, बीवी के, और ज़रा सर ज़्यादा ही नो नो में हिलाए तो सर का ताज तो गिर गया ना। तो बहरहाल बात ये है, घरों को पुरसकून बनाएं। किसी की शेयरिंग आई है, रोज़ ही कुछ ना कुछ आता है, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा खुशी उस शेयरिंग को पढ़ के होती है जब वो कहती हैं कि हमें आपसे पढ़ने के वक्त घर चलाना आ गया। लोग कहते हैं ना, आपसे पढ़कर हमें कुरान पढ़ाना आ गया, तजवीद अच्छी होगी, ग्रामर, ये तो हर टीचर ही चाहता है, लेकिन मुझे खुशी तब होती है कि जब ये गवाहियाँ लोगों से मिले कि हमें घर चलाने आ गए। हम बहुत ही ओवर एक्साइटेड थे, हमारे तो घरों में झगड़े थे बहुत। तो याद रखिए, घरों को बेसकून करके आप दुनिया को सुकून नहीं दे सकते। घर में लड़ाई हो, मैं इस तरह पढ़ा सकती हूँ आपको, आपको मेरी आवाज़ से क्या लगेगा? तो लिहाजा अपने घरों को पुरसकून बनाएं। अगर आपने दीन का काम करना है तो बीवी बच्चे शौहर साथ, ये फैमिली बेस्ड काम है, ये अकेले करने वाला नहीं है काम। इसमें जकरिया और उनकी बीवी की मिसाल है, हज़रत इब्राहिम और उनकी बीवी की मिसाल है, अकेले करेंगे तो दिन ब दिन फासले बढ़ते जाएंगे। अच्छी बीवियां अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से, अपनी केयर से मर्दों को भी इसी काम में लगा लेते हैं। और लिख लीजिए एक बात, अल्लाह के काम करने वालों के जोड़ों के दिलों में अल्लाह उनकी मोहब्बत डाल देता है। बीवी दीन का काम करेगी, अल्लाह मर्द के दिल में डालेगा। मर्द दीन का काम करेगा, अल्लाह उसके बीवी के दिल में डालेगा। तो मिलजुल कर घर का माहौल बनाइए, फेरी टेल्स में से निकलिए। आपके हस्बैंड प्रिंस चार्ल्स नहीं हैं। आपके घरों में ऊंची नीची बातें होंगी। बेटियों को पढ़ाइए तो आयशा की सीरत पढ़ाइए, खदीजा की सीरत पढ़ाइए रदी अल्लाह अन्हुमा, क्योंकि इसके बाद ही घर चलाने आते हैं। हमने फिल्मों, ड्रामों और सोशल मीडिया से जो घर देखे, तो फिर आप देख लीजिए कि आज इंसानियत कितनी परेशान है। आज हमें आइडियल माहौल क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि एक तो सोशल मीडिया ने दिखाया बड़ा आर्टिफिशियल माहौल, और दूसरी बात है कि बीवी अपने चीज़ों में मसरूफ़ है, शोहर अपने। हर एक सोशल मीडिया पे इतना बिजी है कि घर में एक दूसरे से बात करने की भी फुर्सत नहीं है। तो लिहाजा अपना किरदार पहचानिए। इस पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं, मेरा घर मेरी जन्नत पुराने लेक्चर्स में से है। शुरू से जिस चीज़ को मैंने कभी भी ओवरलुक नहीं किया पढ़ाने में, वो घर का सुकून है। घर जन्नत बनेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया भी जन्नत बनेगी। फिर इसके बाद फरमाया I-22, वमिन आयाति ही खल्कु समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम वअल्वानिकुम। इसकी कुदरत की निशानियों में से आसमानों और ज़मीन की पैदाइश और तुम्हारी ज़ुबानों और रंगों का इख्तलाफ भी है। दानिशमंदों के लिए इसमें यकीनन बड़ी निशानी है। कभी लोगों को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस बोलते देखें तो याद करें, कोई गिटपिट करके फ्रेंच बोल रहा है, कोई नोश्क बोल रहा है, कोई उर्दू बोल रहा है, कोई डच बोल रहा है। मैं चूंकि यूरोप में घूमती रहती हूँ, एक एयरपोर्ट पे चढ़ने से और दूसरे पे उतरने तक जुबान बदल चुकी होती है, तो मुझे हर लम्हे याद रहती है कि अल्लाह ये भी आप ही सिखाते, सेम अल्फाबेटिक्स है लेकिन देखिए उसके एक्सेंट्स कितने फ़र्क हैं। तो ये अल्लाह ने सिखाई है जुबानें। और भी इसकी कुदरत की निशानी तुम्हारी रातों और दिन की नींद में है, और इसके फजल यानी रोजी को तुम्हारा तलाश करना भी है। जो लोग कान लगाकर सुनने के आदी हैं, इनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और इसकी निशानियों में से एक ये भी है कि वो तुम्हें डराने और उम्मीदवार बनाने के लिए बिजलियां दिखाता है, और आसमान से बारिश बरसाता है, और इससे मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर देता है। और इसमें भी अक्लमंदों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। इसकी एक निशानी ये भी है कि आसमानों ज़मीन इसी के हुक्म से कायम है। कब से कायम है? देखिए मुद्दतें गुजर गई और जब तक वो चाहेगा ये कायम रहेंगी। फिर जब वो तुम्हें आवाज़ देगा, सिर्फ एक बार की आवाज़ के साथ ही तुम सब ज़मीन से निकल आओगे, और वो सूर की आवाज़ होगी। उस दिन कोई सोता नहीं रहेगा, कोई आंखें मलता नहीं रहेगा, कोई कहेगा नहीं मुझे नहीं उठना। सोचा आपने इस पे क्या है? अल्लाह की पहली पुकार पे लब्बई कहना सीख लीजिए, क्योंकि यही चीज़ कल हम करने वाले हैं। और ज़मीन आसमान की हर हर चीज़ इसकी मलकियत है, और हर एक इसके फरमान के मातहत है। तो क्या सीखा? कि उसी के हुक्मों पे चलना सीखिए। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी, खैर भी आएगी, पीस भी आएगा, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। वही है जो अव्वल बार मखलूक को पैदा करता है, फिर इसे दोबारा पैदा करेगा। और ये तो इस पर बहुत ही आसान है। इसी की बेहतरीन और आला सिफत है आसमानों में भी, ज़मीन में भी, और वही गलबे वाला, हिकमत वाला है। क्या नया रंग है इनमें अल्लाह ताला की निशानियों पर गौर करने का। तो ये देखिए ज़रा मज़ीद गौर करते हैं अल्लाह ताला की निशानियों पे। कौनी और शरई निशानियाँ। कौनी कौनो मका कायनात से है, यानी यूनिवर्सल साइंस, यही सूरज चांद सितारे पहाड़ बादल ज़मीन खुश्की तरी, ये सब कुछ शरई निशानियाँ हैं। कुरान की आयतें जो 6,000 से ज़ायद हैं। हमसे मतलूब क्या है? कि गौर व फिक्र करके मार्फत पाओ और कुर्ब इलाही ले लो। और इसकी रुकावट क्या रस्ते की? सोशल मीडिया का भेजा इस्तेमाल। गाड़ियों में बैठे बच्चे बाहर बादल नहीं देखेंगे, पहाड़ नहीं देखेंगे, रंग बिरंगे दरख्त नहीं देखेंगे, हाथों में पकड़े हुए गैजेट देखेंगे। नोट कीजिए इसको, बड़ी बात है। आज का इंसान नेचर से कट क्यों गया? एक्सपोज नहीं रहा, बंद कमरों में बैठकर इन फिल्मों, ड्रामों और इन बेकार चीज़ों में पड़े रहेंगे। टाइम किलर होंगे, आइज किलर, और सब कुछ किल हो जाएगा, लेकिन बाहर नहीं दिखते। आज लोग वॉक क्यों नहीं करते? गार्डन्स में क्यों नहीं जाते? वजह साफ जाहिर है कि हमारे घरों के अंदर ऐसी खूबसूरत चीज़ें चमकती स्क्रीनों की सूरत में हमारे हाथों में, कि हम अल्लाह की तरफ नहीं देखते। आगे एक मिसाल है, दरब लकुम मसलुम मिन अनफुसिकुम। अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक मिसाल खुद तुम्हारी ही बयान की है। जो कुछ हमने तुम्हें दे रखा है, कि इसमें तुम्हारे गुलामों में से भी कोई तुम्हारा शरीक है, कि तुम और वो इसमें बराबर दर्जे के हो, यानी तुम्हारा और तुम्हारे मुलाजिम का सेम बैंक अकाउंट हो, और तुम इनका ऐसा खतरा रखते हो जैसा खुद अपनों का। हम अकल रखने वालों के लिए इस तरह खोल खोल कर आयतें बयान करते हैं, यानी शिर्क की तो कोई गुंजाइश नहीं है कुदरत के इस कारखाने में, बल्कि बादशाह के ये जालिम तो बग़ैर इल्म के ख्वाहिश परस्ती कर रहे हैं। इसे कौन राह दिखाए जिसे अल्लाह ताला राह से हटा दे, इनका एक भी मददगार नहीं। बस आप यकसु होकर अपना मुँह दीन की तरफ मुतवज्जह कर दें, दुआ कीजिए अल्लाह में फोकस कर दें। और ख़ास तौर पर जब आप सोशल मीडिया पर चंद सेकेंड के लिए बैठिए, कहाँ के कहाँ पहुँच जाएँ, यानी कुछ मीडियम्स नाम लेने की तो ज़रूरत नहीं। आप एक दफ़ा क्लिक तो कीजिए, फिर आपके रिश्तेदारों के रिश्तेदार और दोस्तों की दोस्तें ऐसी खुबेंगी कि जब आप घड़ी देखेंगे तो आप 1 घंटा उस किताब को पढ़ने में लगा चुके, और नमाज 5 मिनट में दिल भर जाता है। तो अरे कुरान, हाय कितनी देर बैठना पड़ेगा, इतना नहीं बैठ सकते, कोई 10-15 मिनट अलग हो तो बताइए। वो भी नहीं सुनते लोग जिनको नहीं सुनना। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की वो फितरत जिस पर इसने लोगों को पैदा किया है, इस अल्लाह के बनाए को बदलना नहीं, यही सीधा तीन है, लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते। सूरत रूम फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा का सबक भी देती है। तो फितरत पे पर्दे पड़ जाते हैं जब इंसान लाहवल हदीस में खो जाता है। आप देखिए कि जब इंसान ख्वाहिश में जाता है ना, तो ख्वाहिशात उसको उड़ाती हैं। लफ्ज़ आपने अगर देखा हो आयत 29 में, क्या अहवा अहम बग़ैर इल्मिन, तो अहवा के हैं ख्वाहिशात, थोड़ा सा ख्वाहिश परस्ती पे बात करते हैं। हवा परस्त इंसान कौन होता है जिसको सिर्फ ख्वाहिशात लस्ट अपनी ही लज्जत अच्छी लगती है? ऐसा शख्स लगवियात में मशगूल रहता है, अल्लाह का दीन समझने के लिए उसको वक्त नहीं मिलता। जदीद तहकीकात के मुताबिक दुनिया में हर एक बंदा औसतन यानी एवरेज तकरीबन कह लीजिए कि 2.5 से 3 घंटे रोज़ाना मौसीकी को सुनने में सर्फ करता है। बींग अ मुस्लिम खुद से पूछिए, क्या 2.5 घंटे डिवाइन म्यूज़िक यानी ये खूबसूरत कलाम सुनती हूँ, झरनों की आवाज़ सुनती हूँ, हवाओं की सरसराहट सुनती हूँ? जब आप इंसानी इंस्ट्रूमेंट से बनी हुई आवाज़ों को सुनने में कानों को लगाएंगे तो क्या कान आफियत में रहेंगे? फिर आप अल्लाह मनी असलुकल आफ़िया राफिनी फ़ी बदनी व बसरी व समी जितना मर्ज़ी पढ़ लें, कान तो दुखी हो गए। तहकीकात ने साबित किया कि दुनिया भर में 28,000 से ज़ायद लोगों का हर एक सेकंड में अखलाक बाख्ता वेबसाइट्स का विजिट है, यानी वो चीज़ें जिनको एक दफ़ा देख लें तो पुतलियों की तरह नाचती रहें कई दिन तक। और मासूम बच्चे ऐसी गंदी फिल्में देखते हैं। आज भी ये फिल्में एक बहुत बड़ा इशू बन गई, इस पर मैंने एक लेक्चर दिया था कि कैसे प्रोन फिल्में और गंदी न्यूड फिल्में जो ख़ास तौर पर हमारे मुस्लिम बच्चे देखते हैं, यकीन करें कि होश गुम करने वाले फिगर्स मैंने रिपोर्ट्स की सूरत में पढ़ के सुनाए थे। मैं खुद कभी ना मानती अगर वो चीज़ मेरे सामने लिखी भी ना होती। गैरों को तो छोड़ दीजिए, हमारे अपने बच्चे गंदी फिल्में देखते हैं, कभी आपने इस पर गौर किया? क्या आप सोशल मीडिया के नाम पे उनको अच्छा इस्तेमाल सिखा चुके? आप तो कुरान सुन रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं ये भी ज़रा देखा करें, उनको साथ बिठाया करें। इसी तरह वक्त और पैसा लगाकर ऐसी फिल्में तैयार की जाती हैं जो मौजू के एतबार से किसी भी माशरे में काबिले कबूल नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ों को वसी पैमाने पे पज़ीराई मिलती है। क्लिक्स देख लीजिए जाकर लोगों के, तो क्या सीखा हमने अभी तक इस सूरत से? पहली बात देखिए कि मार का रोम और फारस का अंजाम बिल्कुल वही हुआ जो कुरान ने पेश किया। ये कुरान पाक की सच्चाई भी थी और अल्लाह के नबी की रिसालत की भी। कायनात का हर ज़र्रा दावत फ़िक्र देता है, आयात की सूरत में आपने देखा। मैदान महशर और मुनकरीन की मायूसी, उस दिन परेशान किए जाएंगे और परेशान होंगे, और बेअमली और गुमराही की वजह से नफसानी ख्वाहिशात के पुजारी अल्लाह से दूर होते हैं और बंदों से भी दूर हो जाते हैं। और इसी तरह से दीन फितरत तो सिर्फ इस्लाम है, नेचुरल वे ऑफ लिविंग गुजारिए, आपके घरों में भी सुकून होगा, बीमारियों और परेशानियों से भी बचे रहेंगे, और अल्लाह ताला आपको मुझे इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे देखिए आयत नंबर 31, कैसे अल्लाह ताला खूबसूरत तरीके से इस बात की दावत देते हैं, मुनीबी नई लई ही वत्तकू वकीमुस्सला, लोगों अल्लाह की तरफ रजू होकर इससे डरते रहो और नमाज कायम रखो और मुशरिकीन में से ना हो जाओ। इन लोगों में से जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और खुद भी गिरोह गिरोह हो गए, हर गिरोह इस चीज पर जो इसके पास है मगन है। ये है दूसरा मुकाम, तो नोट कीजिए, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फ़रिहून, छोटा सा टुकड़ा लेके खुश हो जाते हैं। ये होते हैं वो जिसको ग्रुप विद इन ग्रुप कहते हैं, ये हैं असल में वन मैन शो। मैंने खुद करना है जो करना है, मुझे किसी के साथ नहीं चलना, नहीं मैं इतनी पाबंदियाँ नहीं बर्दाश्त कर सकती, चूँकि मुझे बहुत कुछ करना है। और अगर मैं आपके साथ जुड़ के करूँगी तो आप तो हर चीज़ पे पूछेंगे, हर चीज़ पे पाबंदियाँ लगाएंगे, तो गोया कि मेरी तो ग्रोथ ही रुक जाएगी। हालांकि जाकर देख लीजिए, बड़े काम सिर्फ एक टीम के साथ मिलकर होते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों पर राजी रहने वाले भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन वो काम जो उनके बाद चलेगा वो होगा जो टुकड़ों में बंटने की बजाय एक खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन के साथ पूरे डिसिप्लिन के साथ काम करने में दिखता है। तो आय 30 देखिए, फाकिम वजह कल दीन हनीफा, ये अल्लाह का हुक्म है। क्या मुराद है इससे कि हनीफ होकर तौहीद पर जियो, यानी सब शिर्क के सहारे इधर उधर से ख़त्म कर दो, अल्लाह की तरफ रजू करो, तकवा और नमाज से मदद लो और शिर्क और फिरका परस्ती में ना पड़ो। अल्लाह का हुक्म और हनीफ ना होने की वजह से फितना हर वक्त की बेजा मसरूफियत का हमारे सामने है। कहते हैं वक्त ही नहीं मिलता, फोकस्ड ही नहीं है। अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी से बेहतरीन फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। आप इंसानों की कुछ कमज़ोरियाँ जो कि हर दौर में देखी जा सकती हैं, वैसा मसन्ना सदुर इलई, लोगों को जब कभी कोई मुसीबत पहुंचती है तो अपने रब की तरफ पूरी तरह रजू होकर दुआएं करते हैं, फिर जब अपनी तरफ से रहमत का जायका चखाता है तो इनमें से एक जमात अपने रब के साथ शिरक करने लगती है ताकि वो इस चीज़ की नाशुक्री करें जो हमने दी है। अच्छा तुम फायदा उठा लो, अभी अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। क्या पता चला कि फोकस्ड हो जाओ, मुनी भी न इलई, तवज्जो करो, रजू करो। क्या हमने इन पर कोई दलील नाजिल की है जो इसे बयान करती है, जिसे ये अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं? और जब हम लोगों को रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो खूब खुश हो जाते हैं, और अगर इन्हें इनके हाथों के करतूत की वजह से कोई बुराई पहुँचे तो यकदम वो महज नाउम्मीद हो जाते हैं। क्या है इसका नाम आज के दौर में? डिप्रेशन, स्ट्रेस्ड, अंक सोने लगता है उनको। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ताला जिसे चाहे कुशादा रोजी देता और जिसे चाहे तंग? इसमें भी लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं निशानियां हैं। बस कराबतदार को, मिस्कीन को, मुसाफिर को, हर एक को इसका हक दीजिए। ये इनके लिए बेहतर है जो अल्लाह ताला का चेहरा देखना चाहते हों। ऐसे लोग निजात पाने वाले हैं। अल्लाह हमें यही तड़प लगा दे। तुम जो सूद पर देते हो कि लोगों के माल में बढ़ता रहे, वो अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता। और जो कुछ सदका ज़कात तुम अल्लाह की रज़ा देखने के लिए, यानी उसका चेहरा पाने के लिए और खुशनुदी के लिए दो, तो ऐसे ही लोग हैं जो दुगना किए जाते हैं। अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर रोज़ी दी, फिर मार डालेगा, फिर जिंदा कर देगा। बताओ तुम्हारे शरीकों में कोई भी ऐसा है जो इनमें से भी कुछ कर सकता हो? अल्लाह तआला के लिए पाकी और बरतरी है हर उस शरीक से जो ये लोग मुकरर करते हैं। देखिए शऊर में आने वाली बातें, सिंपल इजी। शिर्क और तौहीद का फ़र्क कितने खूबसूरत तरीके से दिख रहा है, ज़रा इस पे गौर कीजिए। अगर इंसान पैदा होते बच्चे को बिल्कुल खाली छोड़ दे, किसी स्कूल टीचर का रुख न कराए, तो यकीन करिए कि सूरत रूम की नायतों में जो बार बार फितरत की बातें और हकीकत पसंदी की बातें आ रही हैं ये बच्चों में होंगे। फिर आप देखिए कि आय 38 से 40 में जो बातें हुई, ज़रा सा इसको आज के इस थीम के साथ जोड़िए। लाहवल हदीस के फितने का शिकार लोग सूद जैसे गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं। कैसे? बस आप देखिए कि मकसद क्या है, माल बढ़े। नतीजा क्या हुआ कि माल में बरकत ख़त्म और हराम ज़राए से कमाया हुआ माल हराम कामों में खर्च होने लगता। ईजी कम ईजी गो कह लीजिए। गफलत में डूबा हुआ इंसान जब लाहुल हदीस के फितने का शिकार होता तो अल्लाह की खुशनुदी नहीं अपनी ज़ात को खुश करना चाहता, यानी उसको अल्लाह का वच नहीं चाहिए, लोगों को और ख़ुद को खुश करना चाहता। अपना माल मुस्तक लोगों की बजाय लहवल आयब पर खर्च करता। सिनेमा घरों में जाना, मौसीकी की तरबियत लेना और लोगों को इन चीज़ों में इन्वॉल्व करना इसका महबूब मशगला बन जाता है। फिर आप देखिए शादियों में सुन्नत तरीकों को अपनाने की बजाय अल्लाह की मुकरर करदा हदूद से तजावुज़ होने लगता है। अब बताइए कि क्या ऐसे लोगों को अल्लाह का चेहरा मिलेगा, या फिर कहीं अल्लाह ऐसा तो नहीं कि उनकी तरफ देखना भी पसंद ना करे? वो अल्लाह जिसने दुनिया में क्या कुछ रखा, लेकिन लोग अपने बुरे कामों की वजह से किस तरह से इस दुनिया का नुकसान कर रहे हैं, उसका जिक्र बहुत ही मारूफ आयत है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को जितने प्यार से बनाया, लेकिन लोगों ने अपने गुनाहों से इसको कितना गंदा किया। जहर अल फसाद फिल बर्री वल बहर, खुश्की और तरी में लोगों की बदामालियों के बायस फसाद फैल गया। जी ये फसाद गोलियां चलाना नहीं है, बल्कि इस कायनात में लोग उस मकसद को भूल गए जिस मकसद के लिए पैदा किए गए थे, इसलिए कि ना इनके करतूतों का फल अल्लाह ताला चखा दे। बहुत मुमकिन है कि वो बास आ जाएं। ज़मीन में चल फिर कर देखो तो सही, अगलों का इंजाम क्या हुआ जिनमें अक्सर लोग मुशरिक थे। जी ظہر الفساد فی البر والبحر، آیت 41 بہت فیمس آیت ہے سورت روم کے ناطے سے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ خشکی اور تری میں فساد کی وجوہات کیا ہوتی ہیں. فساد تو آپ سمجھ گئے نا، ڈس آرڈر، کسی چیز کا ربط ٹوٹ جانا، تعلق ٹوٹ جانا. پہلی وجہ شرک ہوتی ہے، جہاں شرک ہوگا وہاں فساد ہوگا. اسی طرح حقوق العباد میں کمی، یعنی لوگ اپنے رشتوں کی قدر نہیں کریں گے، شوہر بیوی کا حق نہیں دے پا رہے، بیویاں شوہر کے نہیں. بچوں اور ماں باپ کی مثالیں تو پرانی لگتی ہیں کہ اچھا یہ بھی ہے کوئی حق دیے جانے کے قابل. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے سود اور دیگر گناہوں، بلکہ کبیرہ گناہوں میں انسان شامل ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے کہ زندگی کے معیار کو بڑھانے کے لیے خوب سے خوب تر میں اگر تھوڑے میں نہیں پورا اترا تو پھر قرضے لیے، اور قرضوں میں بہت جگہ انٹرسٹ ہوتا ہے. پھر اس طرف فحش منکر اور لہو الحدیث میں پڑتا ہے انسان، یعنی پوری زندگی غیر سنجیدہ زندگی لگتی ہے. ہر وقت صرف فن فن فن، مزہ لذت تھیم فلاں فلاں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کہہ دیجئے کہ آپ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں، ہم تو ایسا نہیں کریں گے. آپ کیا کریں؟ فَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، بس آپ اپنا رخ سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں، یعنی جب وہ آئے گا تو ٹلے گا نہیں، اس دن سب متفرق ہو جائیں گے، یعنی کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا. کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا، اور نیک کام کرنے والے اپنی ہی آرام گاہ سوار رہے ہیں. ذرا سے اس آیت کی خوبصورتی پہ چند سیکنڈ غور کریں. یہ جو لفظ ہے نا یم ہدون، بستر بچھانے کو کہتے ہیں، بہت خوبصورت بیڈ کوئلٹ ہے، فومی، ریلیکسنگ، سلکی. اور کوئی بچھائے اور اس پہ کہے آئیے آپ آرام فرمائیے، تو آج دین کے راستے کے یہ کانٹے کل جنت کے پھول بنیں گے. آپ کی میری مرضی ہے، اس سوشل میڈیا کے اچھے استعمال کی طرف آ جائیے، اس میں اپنا حصہ ڈالیے، یا پھر ہم گندگی اور نیوڈیٹی پھیلائیں، ٹائم ویسٹ کریں. 3 گھنٹوں میں ہی ایک فلم دیکھی جاتی ہے، قرآن کا پارہ تو اللہ کے حکم سے اس سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. اس کو سننے کے بعد اور اس کو دیکھنے کے بعد کیفیات ایک جیسی ہوتی ہیں. بیچ میں ہو سکتا ہے آپ کو تھکن ہو، لیکن بعد میں ریفریشنس، ریلیکس. اس کے برعکس آپ دیکھیے 3 گھنٹے کی فلم دیکھ کر اٹھنے والا عموماً کیا کہتا ہے؟ تھک گئے، بورنگ تھی، اینڈ تو اچھا ہی نہیں ہوا. اور دل پہ بوجھ، آنکھوں پہ بوجھ، کانوں پہ بوجھ، اور وہ ساری 3D چھک 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 ساری دماغ میں چلتی ہے. کیا اس قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ سکون محسوس کرتے ہیں؟ میرے لیے بیسٹ ٹائم ہوتا ہے جب پارا پورا ہوتا ہے. اگر آپ کا ڈر نہ ہو اور پہلے سے کمٹ کیا ہو تو میں فوراً اگلا پارا شروع کر دوں. اتنا اس وقت بندہ انرجیٹک اور ریلیکس فیل کرتا ہے اپنے آپ کو. تو اب آپ کی مرضی ہے، میں آپ جنت کے بستر بچھوا رہے ہیں یا پھر کچھ اور کر رہے ہیں، یہ آپ کی میری چوائس ہے. تو اپنی آرام گاہیں سواری ہے. دیکھیے قبروں کے باہر لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، دعا کیجئے کہ وہ آرام گاہ ہی ہو. آخری تو وہ نہیں ہے، وہ تو ایک بیچ رستے کا ٹرانزٹ پیریڈ ہے. اصل آرام گاہ تو جنت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے لیے تیاریاں کرنے والا بنائے. لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. وہ کفار کو دوست نہیں رکھتا. اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے، اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. لعلکم تشکرون، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآنی آیتیں اور کونی آیتیں جمع ہو گئیں. بار بار قرآن میں آپ یہ انداز دیکھتے ہیں کہ کائنات پہ غور و فکر کرایا جاتا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گناہگاروں سے انتقام لیا، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. اس کو ہائی لائٹ کیجیے، حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کسی نے نہیں اللہ پہ لازم کیا، اللہ خود اپنے اوپر لازم کرتا ہے. تو مومن بن جائیے، پھر اللہ اپنا یہ حق آپ کے ساتھ بھی نبھائے گا. اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں، ودق، بارش، چھوٹے چھوٹے ڈراپس. اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش خوش ہو جاتے ہیں. یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے. کیسے اللہ تعالیٰ ٹوٹی ہوئی امیدوں کو پھر دوبارہ جوڑتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا بندہ اس کا مزید قرب پاتا ہے، جبکہ لاہور حدیث میں مشغول شخص حقیقی خوشی سے محروم رہتا ہے. कायनात पे गौर व फिक्र और ख़ास तौर पर ये आयतों का सिर्फ तर्जमा ही आपको रिलैक्स नहीं कर रहा? मेरा तो दिल कर रहा खुली फिजा में जाकर ये सब कुछ देखूं। विंडो पास हो तो उसमें से झांक कर देखिए बाहर आसमान के रंग कितने हैं, देखिए कितनी खुशी मिलती है। तो अपने टेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट को चेंज कीजिए, ये भी मैसेज है इस बारे का और इस सूरत का कि क्या स्क्रीन पे चीज़ें देखते हो, आओ कायनात पे अपनी विंडो से तो देखो। घर के बाहर की विंडो कहाँ तुम्हें आसमान की खूबसूरतियाँ और ज़मीन की खूबसूरतियाँ दिखाती है? तो अल्लाह के बंदे इन चीज़ों को देख कर खुश होते हैं, जबकि लाहुल हदीस में मसरूफ़ शख्स अपनी खुशी झूठे एंटरटेनमेंट के सहारों से ढूंढता है। अल्लाह ताला अपनी फितरत के हसीन मनाजिर दिखाता है, बारिश के कतरे बरसाता है, और जब वो छोटे छोटे ड्रॉप्स आपके ऊपर गिरते हैं, क्या प्यारा ताल्लुक बनता है, एक छेड़खानी नहीं लगती? लेकिन हम नेचर से कट गए, तो नियत कीजिए कि अपने बच्चों को लेकर आज बाहर ज़रूर जाना है। ठंडी ठंडी हवा मुंह पे लगती है तो मासूम रोता बच्चा भी चुप कर जाता है। ये हैं इस कायनात की निशानियां जो छोड़कर हम दूसरी चीजों में दिल लगाए बैठे होते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला दोबारा मजीद दावत देते हैं आपको मुझे इस बात की, क्या के फंजुरिल आसारी रहमतिल्ला, बस आप रहमत इलाही के आसार देखें कि जमीन की मौत के बाद किस तरह अल्लाह ताला इसे जिंदा कर देता है। कुछ शक नहीं कि वही मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर हर चीज़ पर कादिर है। और अगर हम बादे तुन चलाते और ये लोग इन्हीं खेतों को मुरझाई हुई जर्द पड़ी हुई देख लें, तो फिर इसके बाद ना शुक्री करने लगें, यानी अल्लाह ताला हवाओं का रुख बदल दे, खुशगवार हवाएं आंधी तूफान में बदल जाएं। बेशक हम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना बहरों को अपनी आवाज़ सुना सकते हैं जबकि वो पीठ फेर कर मुड़ गए हों, और ना पंदों को इनकी गुमराही से हिदायत करने वाले हैं। आप तो सिर्फ इन्हीं लोगों को सुनाते हैं जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, बस वही इतात करने वाले हैं, यानी जो सुनेगा वही डरेगा। अल्लाह ताला वही है जिसने तुम्हें कमजोरी की हालत में पैदा किया, फिर इस कमजोरी के बाद तवानाई दी, फिर इस तवानाई के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया। जो चाहता है पैदा करता है, वो सबसे पूरा वाकिफ और सब पर पूरा कादिर है। वहु अलीमुल कदीर। कभी घर के बुड्ढों को देखिए, देखिएगा इंसान की जिंदगी के मराहिल। आयत 54 में सबसे पहले जोफ, बच्चा कमजोर होता है, बड़ा ही महीन, बाजू मुड़ जाए तो सीधा ना कर सके। कितनी जरूरत होती है बच्चे को माँ की, सोते में अगर बाजू नीचे आ गई तो क्या होगा। इसके बाद कुव्वत आती है, जवानी, इसको शाब कहते हैं। समय तो मेरे जैसा कोई है ही नहीं, पहली बार ही जवानी आई और आई भी बड़ी झूम के। और उसके बाद दो फम व शैबा, कमजोरियाँ और बुढ़ापे। कभी बाथरूम तक जाने वालों को देखा करे, कैसे पाँव रिंग रिंग कर जाते हैं, कोई हाथ ना पकड़े तो जा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते। कभी ये भी जवान थे, कभी ये भी कुव्वत वाले थे। तो रोज़े क़यामत की हसरत और माजरत से बचने के लिए आज ज़िंदगी की हकीकत को जानना है, अपना वक्त लाहुल हदीस में लगाने की बजाय इल्म और ईमान को लगाना, और ख़ास तौर पर बूढ़े होते हुए लोग, क्योंकि ज़िंदगी की चांदी कम हो रही है। बस लोग बूढ़े होने के बावजूद भी लाहुल हदीस नहीं छोड़ते, बल्कि लोग भी कहते हैं अच्छा इनको लगा दो टीवी, बैठ के फिल्में देखते रहें, गाने सुनते रहें। क्या फ़ायदा उन गानों को सुनकर जिसके बाद जज्बात आ भी गए तो उनका इजहार नहीं हो सकेगा, और करेंगे तो घर वाले बातें करेंगे, इन बुड्ढों को क्या हो गया। वक्त के साथ चीज़ें अच्छी लगती हैं, बच्चों को खिलौने अच्छे लगते हैं, जवानों को मेहनत अच्छी लगती है, बुढ़ापे में इबादत अच्छी लगती है, क्योंकि क़यामत करीब है। वह यौम तकूमु अस्साअ, और जिस दिन क़यामत बरपा हो जाएगी, गुनाहगार लोग कस्में खाएंगे कि दुनिया में घड़ी के सिवा नहीं ठहरे, इसी तरह बहके हुए ही रहे। और जिन लोगों को इल्म और ईमान दिया गया था वो जवाब देंगे कि तुम तो जैसा कि किताब अल्लाह में है यौमे क़यामत तक ठहरे रहे। आज का ये दिन क़यामत ही का दिन है, लेकिन तुम तो यकीन ही नहीं मानते थे। या नोट कीजिए, वो लोग जिनको इल्म और ईमान दिया गया, जो इस वक्त आपको मुझे दिया जा रहा है, इन्हीं को हकीकत समझ आई। दुनिया की बाकियों ने तो इस दुनिया का सही अंदाज़ा भी नहीं लगाया। बस इस दिन जालिमों को इनका उज़र बहाना कुछ काम ना आएगा, और न इनसे तौबा और अमल का तलब किया जाएगा। बेशक हमने इस कुरान में लोगों के सामने कुल मिसालें बयान कर दी हैं, आप इनके पास कोई भी निशानी लाएं, ये काफिर तो यही कहेंगे कि तुम बेहुदा गो, बिल्कुल झूठे हो। ना मानने वाले उस दिन भी ना मानेंगे। कैसी हसरत होती है इन आयतों को पढ़ के, और मुझे तो ऐसे लगता है कि वाकई जिस रब ने इंसान को बनाया उसी ने ये कलाम दिया, क्योंकि हर कंपनी जानती है कि उन्होंने जो मशीन बनाई है उसको कैसे चलाना है। तो अल्लाह ताला तो मेरे एक एक पुर्जे को जानते हैं, अंदर के ख्यालात को भी जानते हैं। कज़ालिका यत्बउल्लाहु अला कुलूबिल्लज़ीना ला यालमून। अल्लाह ताला इन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते यूं ही मोहर लगा देता, ठप्पे लग जाते हैं, बस बैठे रहो अपने घर। फिर तौफीक भी नहीं मिलती, जिसको जवानी में नहीं मिलती ना, यकीन कीजिए बहुत कम है कि बुढ़ापे में मिले। जो जवानी में कुरान नहीं उठाता, बुढ़ापे में तो बिल्कुल ही नहीं उठाता। वो कहता, नहीं मेरे से पढ़ा नहीं जाता, मेरे से देखा नहीं जाता। इधर उधर बड़ा दिल लगता है अम्मा जी का, कुरान सुने तो सो जाती हैं। अब्बा जी आज भी खबरें इतनी तपाक से सुनते हैं, लेकिन आखिरत की खबरें नहीं सुनना चाहते। अल्लाह ना करे हमारे दिलों पे ठप्पे लग जाएं। बस आप सब्र करें, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है। आपको वो लोग हल्का यानी बेसब्रा ना करें जो यकीन नहीं रखते, यानी आप अपना कंट्रोल लूज़ ना करें और इनको इनके हाल पे छोड़ दें। तो ये थी सूरत रूम। क्या सीखा? असल दीन को छोड़कर फ़िरकों में नहीं बंटना, ज़मीन पर चल फिर कर अल्लाह का फजल भी तलाश करना है, शुक्र भी करना है, और कायनात पे गौर व फिक्र भी करनी है, सिला रहमी भी करनी है। और सबसे बेहतर सिला रहमी अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों को मसरूफ़ कीजिए इस कुरान के साथ। दिल के अंधे के लिए वाज़ और नसीहत बेअसर है, और नमाज में मुक्तदी और ईमान का जो ताल्लुक़ बन जाता है, ये असल में इस पूरी ज़िंदगी के ताल्लुक़ को सिखाता है कि तुम एक को इमाम बनाकर उसकी इक्तदा में ज़िंदगी बसर कर दो, और इमाम बनने के लायक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा कोई भी नहीं। आगे है सूरत लुकमान। इंसानों के नामों में से एक नाम सूरत लुकमान, जैसे सूरत मरियम एक औरत के नाम पे थी, तो लुकमान ऐसे ही मारूफ थे अरबों में जैसे आज हमारे यहाँ अलामा इकबाल है। एक बड़े हकीम इंसान की तरफ से इसको लिया जाता था इनको घरों में, बल्कि सहीफा लुकमान नाम की बुकलेट्स थी, या कुछ बुक्स की तरह कह लें फजाइल की बुक्स थी। लोग बड़ी इज्जत करते थे, अल्लाह ने उन्हीं के किरदार को सामने रख कर वो बात जो उनकी कुरान सुनने से एक थी उसको पेश कर दिया। इससे क्या पता चलता है, कुरान पढ़ाते हुए आप किसी साइंटिस्ट की भी बात कोट कर सकते हैं, किसी दुनिया के आम इंसान की बात पेश कर सकते हैं, शर्त यह कि वो बात कुरान सुनने से ना टकराए। बस लोग माइंड करते हैं आप साइंस की बातें क्यों बताएं, और आप ये फिगर्स या रिपोर्ट्स क्यों बताएं, तो किनको पढ़ा रहे हैं और क्यों पढ़ा रहे हैं। तो बहरहाल ये कुरान का एक खूबसूरत मिजाज है, 31 नंबर की सूरत है, 34 आयतें हैं, और इसमें हम देखेंगे तरबियत औलाद के खूबसूरत नुक्ते भी। करेक्टर बिल्डिंग के लिए बेस्ट सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। तिलका आयातुल किताबिल हकीम हुदा व रहमतन लिल मुहसिनीन। ये हिकमत वाली किताब की आयतें हैं जो नेकुकारों के लिए राहबर और सरासर रहमत है। जो लोग नमाज कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और आखिरत पर कामिल यकीन रखते हैं, यानी नेक लोगों की निशानियाँ, यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही लोग निजात पाने वाले हैं। और बस लोग ऐसे भी हैं जो लख बातों को मोल लेते हैं कि बेइल्मी के साथ लोगों को अल्लाह की राह से बहकाएं और इसे हंसी बनाएं, यही वो लोग हैं जिनके लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। थी माए तफ्ती पारा। मिनन नासी मैं यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्लन सबीलिल्लाह बिगैर इल्म वयत्तखिज़हा हुज़ुवा। देखिए कितने हुक्म है इसमें। तो ऐसी चीज़ें घरों में आना और लाना जिससे इंसान मकसद हयात से हट जाए और मुफलिख बनने की बजाय खासिर बन जाए, इसको लहवल हदीस कहते हैं। आइए ज़रा डिटेल से देखते हैं लहवल हदीस का फितना क्या फितना है। लिखिए मुफलहून बनने के रास्ते की रुकावट, यानी दुनिया और आखिरत की कामयाबियों के रास्ते का ऑब्स्टिकल, फितना लहवल हदीस। मसलन सोशल मीडिया पर बेकार किस्म की गपशप कभी देखी सुनी, और महरम और गैर महरम का फ़र्क, मॉडलिंग करती हुई खूबसूरत हसीन शक्लें सूरतें, चाहे आपको दीन ही क्यों ना पेश कर रहे हों, लेकिन हर एक तो दीन के लिए वहाँ नहीं बैठा होगा। जब कहने और करने वाली बात में फ़र्क होगा तो असर कहाँ आएगा। फिर इस तरह आप देखिए हर वो चीज़ जो इंसान को अल्लाह और मकसद हयात से गाफिल कर दे, इसमें तो आप देखिए कि गेम्स भी आएंगे, खेल तमाशे मैचेस भी आएंगे। लोग नमाज नहीं पढ़ते क्योंकि आखिरी रन चल रहा है, आखिरी स्कोर चल रहा है, लहवल हदीस। नमाज और जिक्र अल्लाह से गाफिल, बगैर इल्म के इधर उधर पोस्ट शेयर करते फिर रहे हैं, एक एक चीज़ तो दूसरी दूसरी, एक हक में दलायल, एक खिलाफ दलायल, एक में हराम एक में फ़र्ज, क्या कर रहे हैं आप? फितने पे लहवल हदीस है, बेकारियात में डाल दिया लोगों को। फिर आप देखिए कि हर दौर में ये चीज़ें रहीं, पीछे भी हमने सामिरन पे बात की थी, वहाँ भी चौपालों में बैठते थे लेकिन अंदाज़ बदल गए। आज की फिल्में ड्रामे देख लीजिए और उनके थीम्स देख लीजिए, और आज से 10-15 साल पीछे देखिए, आपको वाज़े फ़र्क पता चलेगा कि आज मीडिया कैसे यरगमाल बना हुआ है, कि आप ख़ानदान वाले फैमिली वाले बैठकर इकट्ठे एक शो ना देख सकें। इस तरह से आप देखिए कि बेटियों को फिर वही बात है कि उनको अपने जिस्म को एक्सपोज करने और हया से महरूम होते हुए माँ बाप को दिखाया जा रहा है। फिर आप देखिए कि लाहौल हदीस में वो सब कुछ आता है जो बचपन से हम आप सुनते हैं। मकसद तो ये है कि आपको क्या चाहिए। आज लोग तालीम नहीं हासिल करते, हालांकि आप देखिए इसी सोशल मीडिया पे आज ऑडियो विजुअल यूनिवर्सिटीज़ बन चुकी, लोगों ने आज इसी के ऊपर बड़ी बड़ी मीटिंग्स रन कर ली, लोगों ने इस पे पूरे पूरे बिजनेस रन कर लिए। क्या मेरे आपके नसीब में यही रह गया? अफसोस की बात है कि आज हमारे मुल्क में सोशल मीडिया का ज़्यादा मिसयूज़ है। झूठी खबरें, स्कैंडल्स, इल्ज़ाम तराशियाँ, फलां जेल में चला गया, फलां को निकाल दिया, फलां की लड़की भाग गई। क्या ये है मेरा आपका मिजाज? इतने थर्ड क्लास टेस्ट है हमारे। जो देख रहे हो, अल्लाह रहम करे, मसलन कोई मुजरा देखता था कल, आज आप किसी का डांस देखते हैं, कभी उस वक्त बैठकर सोचें तुफ़ है मुझ पे, मेरा ये टेस्ट है। देखिए ना, चॉइस होती है। आप दुनिया के बाजार में जाते हैं, एक बड़ा डिसेंट मुहज्जब किस्म का जोड़ा ले आते हैं, और एक आता है तो ऐसा जोड़ा जिसको पहन कर पता ही ना चले कि पहनने वाली कौन है। अब आप मुझे बताइए, चॉइस बुरी है ना? तो आप खुद से पूछिए, मेरी चॉइस क्या है सोशल मीडिया में? वक्त लगाऊं तो किस चीज़ पे लगाऊं? क्या जो चीज़ें देखती हूँ उसके बाद अल्लाह याद रहता है? नमाजों में दिल लगता है? क्या फैशन और मॉडलिंग मेरी ज़िंदगी का गोल तो नहीं बनता? और इस तरह से आप देखिए कि इंसान तफरीह के नाम पे जब यरगमाल बना दिया जाए तो हर बंदे को एक ही क्रेविंग लगी हुई है कि फ़न की तरह, फिर सच्ची चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती। फिर आप देखिए कि सोशल मीडिया का जब गलत इस्तेमाल होता है ना, तो इसके हमारे ऊपर इनफरादी तौर पे भी असरात होते हैं और इज्तमाही पे, यानी इंडिविजुअल इफ़ेक्ट्स एंड ओवरऑल जो है उसको अलग से देखिए। इंडिविजुअली देखिए, वक्त और पैसे का ज़ियाँ, मकसद हयात से गफलत, दिल में निफाक आता है। साफ हदीस है कि गाने बजाने से दिल में ऐसे निफाक आता है जैसे बारिश के बाद सब्जा उगता है। फिर कुरान का सुनना अच्छा नहीं लगता, हुकूकुल्ला और हुकूकुल बात में गफलत होती है, बच्चों की तालीमी कारकर्दगी मुतासिर होती है। आप देखिए कि बच्चों को क्यों इम्तिहान के दिनों में आप कहते हैं अब आप टीवी नहीं देखेंगे? सेहत ख़राब होती है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, बैठे बैठे रहने से वेट गेन करते हैं, एक हाथ में चिप्स है, एक में कोक है, दांत ख़राब होते हैं। फिर आप देखिए उठने जागने के मामूलात में तब्दीली आती है, लेट नाइट बैठकर जब फिल्में और ऐसी चीज़ें देखेंगे तो सुबह कौन उठे फजर पे, और जो उठ भी जाएगा तो उसने क्या पढ़ा नमाज में, ये उसको पता है या अल्लाह को पता है? फिर इस तरह आप देखिए इसके कुछ इज्तमाही असरात होते हैं, यानी जो पूरे सोशली हमारे माशरे पे आते हैं। तो सबसे पहली बात तो देखिए कि गफलत और गुमराहियाँ फैलती हैं। आज मजमूई तौर पर हम एक गाफिल उम्मत बन चुके हैं, जहनी पसमानदगी का शिकार होते हैं, छिछोरी चीज़ें अच्छी लगती हैं माशरों में, फहाशी और रुयानी आम होती है, जो आज रात को देखा वो अगले दिन लोग आजमाने की कोशिशों में लगे होते हैं। अखलाकी बुराइयों और जरायम में इजाफा होता है, कई दफ़ा सोशल मीडिया से चोरी चकारी डकैती के तरीके सीख लिए जाते हैं, नफसियाती बीमारियां शुरू हो जाती हैं, दीनी फ़राइज़ और जिहाद से दूरी है, कमज़ोर नस्लें छोड़ के जा रहे हैं, उम्मत का जवाल शुरू हुआ, और फिर बाज़ दफ़ा तो अल्लाह की पकड़ भी आ जाती है। तो आपको मुझे अपने आप को ट्रेन करना है, अपने बच्चों को भी। इब्ने माजा की रिवायत है 4020, आपने फरमाया मेरी उम्मत में से कुछ लोग शराब पियेंगे और इसका नाम कुछ और रख देंगे, यानी कि बड़ा स्वीट सा नाम होगा, नहीं ये शराब थोड़ी, इट्स जस्ट लाइक दिस ड्रिंक। इनके सरों पर बाजे बजाए जाएंगे और गाने वाली औरतें गाएंगी, तो अल्लाह ताला इन्हें ज़मीन में धंसा देगा और इनमें से बास को बंदर और सुअर बना देगा। ये सरों पर बाजे बजाने हमारे बुज़ुर्गों को नहीं समझ आए। किसी स्कॉलर ने कहा कि आप जब हेडफोन्स लगे हुए बच्चों को थरथराते देखें तो यह हदीस समझ आ जाती है। अल्लाह ताला आपको मुझे हमारी नस्लों को लाहौल हदीस से बचा ले और इसके आफ्टर इफेक्ट से बचा ले। ऐसे लोगों की फिर कैफियत क्या है? वैसा तुतला अलैहि आयातुना वल्ला मुस्तकबिरा, जब इसके सामने हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं तो तकबर करता हुआ इस तरह मुंह फेर लेता गोया किसने सुना ही नहीं, यानी अल्लाह की बात, माँ की बात, बाप की बात, दीन की बात सुनी अनसुनी फिर कर देते हैं लोग, गोया कि इसके दोनों कानों में डार्ट लगे हुए हैं, यानी सील अंदर जा ही कुछ नहीं रहा, ढक्कन है कानों पे। आप इसे दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए, बेशक जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और काम भी नेक किए, इनके लिए नेमतों वाली जन्नतें हैं, अल्लाह में इसका हकदार बना दे। तो लाहुल हदीस में मुबतला लोग इन आयतों की रोशनी में अल्लाह की आयात सुनकर घमंड में आकर मुंह फेर लेते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता। वो शायद इमाम अबू हनीफा रहमहुल्ला का कौल है कि बुरे लोगों की महफिल में ना बैठो क्योंकि ये तुम्हें अच्छे लोगों से बदगुमान कर देंगे। और आज आप देखिए लफ्ज़ मौलवी कब मजाक बना, दीनदारों को कब एक्सट्रीमिस्ट कहा गया, जब लाहौल हदीस के नाते से चंद लोगों ने बड़ी बड़ी बातें आके स्क्रीनों पे की। जरूरत मिल गई लोगों को दीन को और दीनदारों को बुरा कहने की। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे ड्रामे देख देख कर रोते हैं कि जिसमें फहाशी और उरियानी होती है, लेकिन इन्हें कुरान सुनकर रोना नहीं आता। ऐसे हो जाते हैं जैसे आयात सुनी अनसुनी क्यों। कल नजर बिन हारस और मक्का के सरदार थे, आज तो एक ईंट उठाओ तो नीचे से एक एंकर और एक शो करने वाला निकल है। जितने शो आज के दौर में हुए शायद ही कभी हो। एक ड्रामा और एक कह लीजिए कि मजहबी प्रोग्राम, और इस तरह एक एक चीज करके पीटीवी की नशरियात 2-4 घंटे में पूरी हो जाती थी। वो वक्त और आज का वक्त याद कीजिए, तब फिर भी लोग वक्त पे सो जाते थे। आज तो अल्लाह की पनाह है हम सब पे जो ये वार है मीडिया की गलत सोच का, इससे हमारी नस्लें बच जाएं अल्लाह की हुक्म से। अल्लाह ताला कहते हैं, इस दुनिया में सब लेना चाहते हो, यहाँ नहीं मिलेगा, उस जन्नत की कोशिश करो जिसमें खालिदीन फीहा, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है, वो बहुत बड़ी इज्जत और गलबे वाला और कामिल हिकमत वाला है। इसी ने आसमानों को बगैर सतून के पैदा किया है। तुम इन्हें देख रहे हो कि इसने जमीन में पहाड़ों को डाल दिया ताकि वो तुम्हें जुम्बुश न दे सकें, और हर तरह के जानदार जमीन में फैला दिए, और हमने आसमान से पानी बरसाकर जमीन में हर किस्म के नफीस जोड़े उगा दिए। बार बार कायनात में गौर व फिक्र की दावत है इस बारे में, यानी सोशल मीडिया का तोड़ क्या है कि इंसानियत दोस्त बनो और कायनात दोस्त बनो। उसके अंदर गौर व फिक्र करते हुए देखो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कितनी हसीन चीजें रखी हैं खुश होने के लिए। ये है अल्लाह की मखलूक, अब तुम मुझे इसके सिवा किसी दूसरे की कोई मखलूक तो दिखाओ। कुछ नहीं, बल्कि ये जालिम खुली गुमराही में है। और हमने यकीनन लुकमान को हिकमत दी थी कि तू अल्लाह का शुक्र अदा कर, और हर शुक्र करने वाला अपने ही नफे के लिए शुक्र करता है, और जो भी नाशुक्री करे वो जान ले कि अल्लाह ताला बेनियाज और तारीफों वाला है। यहाँ से देखिए लुकमान का जिक्र है, और पहली खूबी जो उनकी बयान की गई वो क्या थी कि वो हिकमत वाले थे, और हिकमत का तकाजा क्या है कि शुक्र किया जाए। तो शुक्र करने वाला ही असल में हिकमत वाला होता है। किसी ने हकीम लुकमान से पूछा कि आपको ये हिकमत कैसे मिली, कहने लगे चार बातों की वजह से। नंबर एक, रास्तबाजी, सच बोलता हूँ, बेफायदा बातों से इज्तनाब करता हूँ, यानी नहीं रुक जाता बेकार चीज़ों में। वो एक आप कह लीजिए कि सोशल मीडिया पे बेकार वक्त ज़ाया नहीं करता। फिर खामोशी से, अक्सर खामोश रहता हूँ, और अमानत के इख्तियार करने से। आज यहाँ पर मैं इन चार चीज़ों को एक अच्छी हिकमत वाली बातचक वाले जरिए समझ कर लिख लें, हमारी भी नस्लें सजेंगी। आज बच्चों की तरबियत के लिए माँ बाप के इस वक्त नहीं है, क्योंकि या तो कमाते हैं या खुद एंटरटेनमेंट के नाम पे घर आकर टीवी खोल कर बैठ जाते हैं। अक्सर माएँ ये शिकवा करती हैं कि शौहर बच्चों को वक्त नहीं देते, घर भी आ जाएं तो कहते हैं मैं थका हुआ आया हूँ, मुझे भी फन चाहिए। तो अल्लाह ताला में औलादों का हक अदा करने की तौफीक दे। बड़े प्यारे अंदाज में बेटे को नसीहतें करते हैं, और जबकि लुकमान ने बाज कहते हुए अपने बेटे से फरमाया कि मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह के साथ शरीक ना करना, बेशक शिर्क बड़ा भारी जुल्म है। हमने इंसान को इसके माँ बाप के मुतल्लिक नसीहत की, इसकी माँ ने दुख पर दुख उठाकर इसे हमल में रखा, और इसकी दूध छुड़ाई 2 बरस में है कि तू मेरी और अपने माँ बाप की शुक्रगुजारी कर, तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और अगर वो दोनों तुझ पर इस बात का दबाव डालें कि तू मेरे साथ शरीक करे जिसका तुझे इल्म ना हो, तो इनका कहना न मानना। हाँ, दुनिया में इनके साथ अच्छी तरह से बसर कर और इनकी राह पर चलना जो मेरी तरफ झुका हो, तुम्हारा सबका लौटना मेरी ही तरफ है। तुम जो कुछ करते हो इससे फिर मैं तुम्हें खबरदार कर दूंगा। प्यारे बेटे, अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर हो, फिर भी वो ख्वाह किसी चट्टान में हो या आसमानों में हो या जमीन में हो, इसे अल्लाह ताला जरूर लाएगा। अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन और खबरदार है। ऐ मेरे प्यारे बेटे, तू नमाज कायम रखना, अच्छे कामों की नसीहत करते रहना, बुरे कामों से मना किया करना, और जो मुसीबत तुम पर आए सब्र करना। यकीन मान के ये बड़ी हिम्मत के कामों में से है। लोगों के सामने अपने गाल न फुला और जमीन पर अकड़ कर न चल। किसी तकबर करने वाले शेखी खोरे को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अपनी रफ्तार में म्याना रवी अख्तियार कर और अपनी आवाज पस्त कर। यकीन आवाजों में सबसे बदतर आवाज गधों की आवाज है। ऐसे लगता है कि एक खूबसूरत पैकेज है बच्चों की तरबियत का, और खास तौर पे जवान होते हुए बच्चों का। तरबियत औलाद पे इस पे बीसियों बार बात हुई, और बहुत खूबसूरत पैकेज है। कुरान की किरने में भी ये मौजू आता है जिसमें बच्चों की तरबियत सीखी जाती है। लेकिन यहाँ जो बातें हमने सीखी उसको अगर एक तरतीब के साथ देख लें, तो लुकमान के अपने बेटे को खूबसूरत नसीहतें जो लाहुल हदीस में मशगूल बाप नहीं कर सकता क्योंकि वो वक्त नहीं देता, तो तरतीब से देखें तो बच्चों को सबसे पहले जिस चीज़ का हुक्म देना है या जिस चीज़ का सबक देना है वो अल्लाह को एक मानना, शरीक नहीं करना किसी को, क्योंकि शिर्क जुल्म है। आप कहते हैं बच्चों को कैसे शिर्क सिखाएं, तो आप देखिए कि बच्चे को शिर्क माएँ कैसे सिखाती है, लोगों का डर दे के लोग क्या कहेंगे, खाना अम्मी लेके आई अब्बू लेकर आई, हर चीज़ में बच्चों को, छोटे बच्चों को इवन अल्लाह से जोड़िए, अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने दिया, मामा ने पकाया, इस तरह से। फिर इस तरह आप देखिए आसमानों या ज़मीन में राई के दाने के बराबर चीज़ भी अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह लतीफ़ुल ख़बीर है। इससे आप अपने बच्चों को तकवा सिखा सकते हैं कि बेटा आप अम्मी अब्बू से छुप सकते हैं, डर सकते हैं, टीचर्स नहीं जानते आप क्या करते हैं बाद में, अल्लाह को पता है। फिर इस तरह अपनी चाल में मियाना रवि रखना, आवाज़ को पस्त रखना, एथिक्स सिखाना है। आज बच्चे चीखते रहते हैं घरों में, एक थमा चौकड़ी है, इससे रुकिए। लोगों से मुंह फुलाकर बात ना करना, ज़मीन में अकड़ करना चलना, ख़ास तौर पे बेटियों को स्माइलली सिखाइए, स्माइल एंड सलाम, ये वो दो सुन्नतें हैं जो आपकी बेटियों को ससुराल में पसंदीदा बनाएंगी। आज देखिए अक्सर बच्चे गुस्से में लगते हैं, ख़ास तौर पे जब माँ बाप की उम्र के लोग उनके सामने हों, अपने दोस्तों में हो सकता स्माइल हो, यंग बच्चियाँ अक्सर बोलती नहीं महफिलों में, कहीं चली भी जाएँ तो लिफ्ट नहीं कराने वाला अंदाज, जैसे अंदर एक बड़ाई का एहसास है। तो बेटियों और बेटों को स्माइली बनना सिखाएं, इंसान दोस्त बनना सिखाएं, चाल भी नरम हो, अब कपड़े भी ऐसे हैं कि जिसमें बंदा अकड़ी जाए, लेकिन आजसी की चाल बच्चों को सिखानी चाहिए, बहुत धड़ धड़ पाँव नहीं मारने ज़मीन पे, नमाज कायम करना, अच्छी बातों की तलकीन और बुरे कामों से रोकना। तो याद रखिए अपने बच्चों को हम खुद सिखाएंगे, दूसरे नहीं सिखा सकते, वो इल्म थोड़ा बहुत दे देंगे, उनको कोई अलिफ बाता सिखा देंगे या उनको कुरान के लफ्ज़ सिखा देंगे, लेकिन तरबियत माँ बाप देते हैं। अगर दीनी इदारे बच्चों के दिलों में ईमान का बीज डालते हैं ना, तो इस बीज को उगना आपके घर के आंगन में, दरख्त इसको आप ही बनाएंगे। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह तआला ने ज़मीन और आसमान की हर चीज़ को हमारे काम में लगा रखा है और तुम्हें अपनी ज़ाहरी और बातनी नेमतें भरपूर दे रखी हैं। बास लोग अल्लाह के बारे में बग़ैर इल्म के, बग़ैर हिदायत के और बग़ैर रोशन किताब के झगड़ा करते हैं, अल्लाह माफ़ करे। बस दफ़ा कोई ऐसा सीन आंखों में आ जाता है कि आज सोशल मीडिया पे बड़ी बड़ी स्क्रीनों में कुछ लोग इसी तरह अल्लाह का दीन पेश कर रहे होते हैं। आई डोंट नो किसके पास कितना इल्म है, लेकिन अंदाज तो ऐसा ही होता है कि बग़ैर इल्म के बहसें कर रहे हैं। ये भी आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला है। कल आप किसी से पूछते थे ना, आपने कहाँ से सीखा, किस मदरसे में गए, किस उस्ताद से सीखा, तो एक खूबसूरत लिस्ट होती थी, एक बड़े वेल नोन लोगों का नाम होता था। आज लोग, हम टीवी से सीख रहे हैं, हम व्हाट्सएप से सीख रहे हैं, चलिए उस पर भी प्रॉपर कोई बाजाबता किसी की कस्टडी में सीख रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी एक अच्छा मीडियम है। लेकिन सुबह कुछ सुना, शाम कुछ सुना, एक चैनल में एक किया, फिर थोड़ी देर बाद आपने चेंज किया, नहीं ये बोरिंग है, ये तो आप अपने उस्तादों को अपने इशारों पर नचा रहे हैं, किसी चैनल में 5 मिनट रुके नहीं, अब दूसरा खोलते हैं, अब तीसरा खोलते हैं, याद रखिए चस्का है सिर्फ, बल्कि ये आप चेक कर रहे होते हैं कि कौन अच्छा उस्ताद है, कौन बुरा, किसने क्या गलतियाँ की, और सिर्फ कंपैरिजन कर करा के आप चंद जुमले देकर, कमेंट्स देकर वहाँ से उठते हैं। इल्म की ये शान, इल्म ऐसे आता नहीं है। क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ने ज़मीन आसमान की हर चीज़ को हमारे काम में लगा रखा है, देखते हैं ना, और तुम्हें अपनी ज़ाहरी और बातनी नेमतें भरपूर दे रखी हैं। बस लोग अल्लाह ताला के बारे में बग़ैर इल्म के, हिदायत के और बग़ैर रोशन किताब के झगड़ा करते हैं, तो जुर्मे अकबर है इस किताब को पढ़े बग़ैर लोगों को गाइड करना। आधा पढ़ के पूरा नहीं पढ़ा सकेंगे, अभी आपने तो खुद पूरी तरह जज्ब नहीं किया, तो याद रखिए देने से पहले लीजिए, पूरा लीजिए तो फिर पूरा देंगे, और सिर्फ इस तरह की बातें कर करा कर अपने आप को दीन के नाम पे मारूफ करने लोग, कुछ शोहरत भी मिल जाती है याद रखिए, लेकिन कबूलियत नहीं होती, एक हवा की तरह आते हैं और एक हवा की तरह उड़ जाते हैं। तो याद रखिए कि जान मारनी पड़ेगी, संजीदा कोशिशें करनी पड़ेंगी अगर आप इंसानियत को इल्म का ये तोहफा देना चाहते हैं। जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई वही किताबेदारी करो, तो कहते हैं हमने तो जिस तरीके पर अपने बाप दादाओं को पाया इसी किताबेदारी करेंगे, अगरचे शैतान इनके बड़ों को दोजख के अजाब की तरफ बुलाता हो। और जो शख्स अपने आप को अल्लाह के ताबे कर दे, अल्लाह हमें इनमें शामिल कर ले, और हो भी नेकुकार, यकीनन इसने मजबूत कड़ा थाम लिया, तमाम कामों का अंजाम अल्लाह ताला की तरफ है, काफिरों के कुफर से आप रंजीदा न हो, आखिर इन सब का लौटना तो हमारी जानिब ही है, फिर हम इनको बताएंगे जो उन्होंने किया, बेशक अल्लाह ताला सीनों के भेद तक से वाकिफ है, हम इन्हें गो कुछ यूं ही फायदा दे दें, लेकिन बिलाखिर हम इन्हें नहायत बेचारगी की हालत में सख्त अजाब की तरफ हका ले जाएंगे। अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि आसमान और ज़मीन का खालिक कौन है, तो ज़रूर जवाब देंगे कि अल्लाह ताला, तो कह दीजिए कि सब तारीफों के लायक अल्लाह ही है, लेकिन इनमें से अक्सर बेइल्म है, आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है वो सब अल्लाह ताला का है। यकीनन अल्लाह ताला बड़ा बेनियाज और तारीफों वाला है। सूरत की आखिरी आयतें देखिए, कैसे अल्लाह ताला की शान बड़ाई बयान की जा रही है। उसकी वसअतों को जहन में रखते हुए सुनिएगा इस आयत को, और फिर हम देखेंगे कि अल्लाह ताला किस तरह से इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है। वलो अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक्लामु वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिही। रूहे ज़मीन के तमाम दरख्तों के अगर कलमें बन जाएं, यानी दरख्तों के कलम बन जाएं, और तमाम समंदरों की स्याही हो, और इसके बाद 7 समंदर और हों। किसको पता था कुरान उतरते हुए कि समंदर 7 हैं? अरब तो बेचारे बाहर ना निकले, ये अल्लाह को पता था। ताहम अल्लाह ताला के कलिमात खत्म नहीं हो सकते, बेशक अल्लाह ताला गालिब और बाहिकमत है। तुम सब की पैदाइश और मरने के बाद जिंदा करना ऐसा ही है जैसे एक जी का, यानी एक इंसान को जिंदा करना जितना आसान है अल्लाह के लिए, उतना सारी कायनात को। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। तो क्या पता चला, अल्लाह की बातें ये क्या होती हैं। पहली बार देखिए कि अल्लाह से मोहब्बत रखने वाला अल्लाह की बातों में ही मशगूल रहता, उसको सिर्फ अल्लाह की बातें अच्छी लगती है। फिर अल्लाह की बातों से मुराद उसके तख्लीकी काम, उसकी कुदरत और उसकी हिकमत के करिश्मे हैं। जबकि लख बातों में मसरूफ रहने वाले अल्लाह ताला की बातों में तफक्कुर करने की फुर्सत ही नहीं पाते। तो जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन के सारे दरख्त कलम बने, ज़रा सा तसव्वुर में लाइए कितने अरबों खरबों कलम बन जाएं फिर भी ना ख़त्म हो, सारे समंदरों की स्याहियाँ बन जाएं इंक, और 7 समंदर और आ जाएं, लेकिन आप अल्लाह की बातें लिख नहीं पाते। अल्लाह ताला हमें अपनी बड़ाई का एहसास दिला दे। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह ताला रात को दिन में और दिन को रात में खपा देता है? जी बताइए, कभी कर्टन हटाकर सुबह शाम ये मंजर देखा? नहीं देखा तो आज तो देखिएगा। सूरज चांद को इसी ने फरमाबरदार कर रखा है, हर एक मुकर्रर वक्त तक चलता रहे। अल्लाह ताला हर उस चीज़ से जो तुम करते हो खबरदार है। ये सब इंतजाम इस वजह से हैं कि अल्लाह ताला हक है, और इसके सिवा जिन जिन को लोग पुकारते हैं सब बातिल है। यकीनन अल्लाह ताला बहुत बुलंदियों वाला और बड़ी शान वाला है। यानी कोई एक रात को दिन में बदल सका या दिन को रात में, तो फिर क्यों उनको तंग करते हो? क्या तुम इस पर गौर नहीं करते कि दरिया में कश्तियाँ अल्लाह के फजल से चल रही हैं, इसलिए कि वह तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखा दे? यकीनन इसमें हर सब्र और शुक्र करने वाले के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं, और जब इन पर मौजें साइबानों की तरह छा जाती हैं तो नहायत खुलूस के साथ एतकाद करके अल्लाह ताला ही को पुकारते हैं। फिर जब वो बारी ताला इन्हें निजात देकर खुशकी की तरफ पहुंचाता है, तो कुछ इनमें से इतदाल पर रहते हैं और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ वही करते हैं जो बदहद और ना शुक्रे हों, यानी अल्लाह का खाकर उसकी नहीं मानते। फिर आपको मुझे पुकारा जा रहा है, या अय्युहन्ना सुत्तकू रब्बकुम। लोगो अपने रब से डरो और इस दिन का खौफ करो जिस दिन बाप अपने बेटे को कोई नफा ना पहुंचा सकेगा और ना बेटा अपने बाप का जरा भी नफा करने वाला होगा। याद रखो अल्लाह का वादा सच्चा है, देखो तुम्हें दुनिया की जिंदगी धोखे में ना डाले। चंद सेकंड सोचिए। और ना धोखे बाद शैतान तुम्हें धोखे में डाल दे। बेशक अल्लाह ताला ही के पास क्यामत का इल्म है, वही बारिश नाजिल फरमाता है और माँ के पेट में जो है इसे जानता है। कोई भी नहीं जानता कि कल क्या कुछ करेगा, ना किसी को ये मालूम है कि किस जमीन में मरेगा। याद रखो अल्लाह ताला पूरे इल्म वाला और सखी खबरों वाला। इन आयतों पे 1 साल दौरे कुरान में आयते तदब्बर चूज किया गया था, नफ्स के धोखे। बहुत ही सॉफ्ट सा टॉपिक था, आधे घंटे से पौने के बिटवीन का लेक्चर था, लेकिन तदब्बर का अंदाज जरा गौर व फिक्र वाला होता। पढ़ते सुनते महसूस होता है कि वाकई हम दिन रात शैतान के हाथों में कैसे तरने वाला बनते हैं। तो सूरत लुकमान पूरी हुई, क्या सीखा? हजरत लुकमान के अपने बेटे को नसीहतें और वसीयतें, हमें भी अपनी औलादों को ये सब कुछ करना पड़ेगा। फिर लहव लाइब और मौसीकी और लगवियात से बचना। अल्लाह ताला की तौहीद और इबादत के बाद वालदैन की खिदमत और इताअत का हुक्म है। क़्यामत के दिन आला अखलाक वाले ही जीतेंगे, यही काम आएगा। और फिर गैब की 5 चीज़ें हमने सूरत के एंड पे देखी। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, ना किसी ज्योतिषी के पास जाइए, ना काहिन के पास जाइए, ना पामिस्ट्री की किसी चीज़ में जाइए, वरना इबादत ज़ाया हो जाएंगी। आयत 33 में हमने देखा कि लाहुल हदीस के फितने में मुब्तला लोग आज में गुम होकर कल को भूले हुए हैं। बस उनको आज चाहिए, सब चाहिए, जो मिलता है जिस तरह मिलता है। अल्लाह ताला का डर और क्यामत का खौफ नहीं रहता। दुनिया की जिंदगी और शैतान ने इनको धोखे में डाला हुआ है, अल्लाह ताला निकाल दे। अगली सूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा सूरतों में से सूरत सजदा है। देखिए सजदा नमाज का एक रुकन है, क़याम नाम की सूरत नहीं, रुकू नाम की सूरत नहीं, सजदे की है, क्योंकि वस्जुद वक्त अरे अल्लाह का कुर्ब मिलता है सजदों ही से, तो अल्लाह ताला के नबी की कुर्बत मिलेगी। 32 नंबर की सूरत है, 30 आयात हैं, और अल्लाह के नबी इस सूरत को पढ़े बगैर रात को सोते नहीं थे। आइए देखती है कि इसमें जेम्स क्या हैं, नोट कीजिएगा तो आपको इतना कुछ मिलेगा कि आप आज रात से ही इसको पढ़कर सोएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, तंजीलुल किताबि ला रैब फीहि मिर रब्बिल आलमीन। बिला शुबा इस किताब को उतारना तमाम जहानों के परवरदिगार की तरफ से है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है जो मैं आप पढ़ रहे हैं। क्या ये कहते हैं कि इसने इसे घड़ लिया है? नहीं नहीं, बल्कि ये तेरे रब्बे ताला की तरफ से हक है, ताकि आप इन्हें डराएं जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, ताकि वो राह रास्त पर आ जाएं। किताब का मौजू क्या है? लोगों को हिदायत पे बुलाना। अल्लाह ताला वो है जिसने जमीन व आसमान और जो कुछ इनके दरमियान है सबको 6 दिन में पैदा कर दिया, फिर अर्श पर कायम हुआ। तुम्हारे लिए इसमें कोई मददगार और सिफारशी नहीं, क्या इस पर भी तुम नसीहत हासिल नहीं करते? यानी जब काम सारे अल्लाह बनाता है तो तुम किसी और की तरफ क्यों जाते हो? वो आसमान से लेकर जमीन तक हर काम की तदबीर करता है। इसमें मेरे आपके भी सारे काम है, तो दुआ कर लीजिए अल्लाह हमारे कामों की प्लानिंग तो खुद कर और जो बेहतरीन चीज़ है उस पर हमारी रहनुमाई कर दे। फिर वो काम एक ऐसे दिन में इसकी तरफ चढ़ जाता है जिसका अंदाजा तुम्हारी गिनती के 1,000 साल के बराबर है, गैब की चीजों में से है। यही है छुपे खुले का जानने वाला, जबरदस्त गालिब, बहुत ही मेहरबान, जिसने नहायत खूब बनाई जो चीज भी बनाई। और इंसान की बनावट मिट्टी से शुरू की। कम से कम 3 चीजों पर गौर कीजिएगा इस आयत के बाद। बच्चे को देख लीजिए, पौधे को देख लीजिए, आसमान को देख लीजिए, लगता है ना कि खूब बना है, कहीं कोई झोल नहीं है, कोई नक्स नहीं है। फिर इसकी नस्ल एक बेवकत पानी के निचोड़ से चलाई, जिसे ठीक ठाक करके इसमें इसने रूह फूंकी। इसी ने तुम्हारे कान आंखें और दिल बनाए, इस पर भी तुम बहुत ही थोड़ा एहसान मानते हो। शर्मिंदगी वाली बात है, थोड़ा सा इंसान गौर करे तो शर्म से सर झुक जाए। इतनी नेमतें लेकर खाकर पीकर कलीलम्मा तश्कुरू। तो अल्लाह की नेमतों में 3 बड़ी नेमतें हैं इस आयत में, देखिए, आंखें, कान और दिल। इन्हीं का सही इस्तेमाल है, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल, और इन्हीं का गलत इस्तेमाल है, लाहवल हदीस में खोना। हमसे क्या मतलूब है कि इन नेमतों का बेहतरीन शुक्र अदा करें, और इन नेमतों की नाशुक्री क्या है कि इनको लाहवल हदीस में मुलव्वस कर दें और अल्लाह की नाफरमानी के काम करें। अल्लाह ताला आपको मुझे सही इस्तेमाल करने वाला बनाए। वकालू इज़ा दललना फिल अर्द इन्ना लफी खल्क़िन जदीद, और उन्होंने कहा जब हम जमीन में रल मिल जाएंगे तो क्या फिर नई पैदाइश में आ जाएंगे? बल्कि बात यह है कि वो लोग अपने परवरदिगार की मुलाकात के मुनकर हैं। दिल नहीं मानता था ना कि मरने के बाद जीने को माने, तो इसीलिए अल्लाह के नबियों के सामने आकर ऐसी उल्टी सीधी बातें करते थे। कह दीजिए कि तुम्हें मौत का फरिश्ता फौत करेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया। वो कीला भी को कहते हैं कि दिन में कई बार आकर मौत का फरिश्ता झांकता है कि मैंने इस बंदे को किस दिन लेना। थुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाउन, फिर तुम सब अपने परवरदिगार की तरफ लौटाए जाओगे। एक दिन वो झांकने आएगा और साथ ले जाएगा, और फिर क्या होगा? काश कि आप देखते कि जब गुनाहगार लोग अपने रब्बे ताला के सामने सर झुकाए हुए होंगे, उस दिन सब अकड़ खत्म। कहेंगे हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, अब तो हमें वापस लौटा दे, हम नेक अमल करेंगे, हम यकीन करने वाले हैं। गैब का पर्दा छटेगा ना, तो अबू बकर सिद्दीक का ईमान और अबू जहल का ईमान एक बराबर हो जाएगा। असल इम्तिहान तो गैब में है ना, यूमिनूना बिलगैब। तो वो ईमान किस काम का कि पुलिस वाले को देख कर चोरी से तौबा करें, रिजल्ट देख कर कोई कैब वापस भेजो और मैं दोबारा पढ़ कर आऊं? अगर हम चाहते तो हर शख्स को हिदायत नसीब फरमा देते, लेकिन मेरी ये बात बिल्कुल हक हो चुकी है कि मैं ज़रूर ज़रूर जहन्नुम को इंसानों और जिन्नों से पुर कर दूंगा। अब तुम अपने इस दिन की मुलाकात के फरामोश कर देने का मज़ा चखो, यानी अब वापसी नहीं है, अब तो रिजल्ट का दिन है। हमने भी तुम्हें भुला दिया, और अपने किए हुए आमाल की शामत से हमेशा अजाब का मज़ा चखो, यानी आज तो रिजल्ट का दिन है, वापस ले जाए जाने का दिन नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या हाल होगा उस दिन। उस स्टूडेंट की तरह सारे साल की मस्तियाँ उसकी आंखों में आएंगी और उसको खुद पे गुस्सा आएगा, क्यों वक्त ज़ाया किया। लाहुल हदीस में हमारी आयतों पर वही मन लाते हैं जिन्हें जब कभी इनसे नसीहत की जाती है तो वो सजदे में गिर पड़ते हैं, अपने रब की हम के साथ इसकी तस्बीह पढ़ते हैं और तकबुर नहीं करते। तताजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजे, और इनकी करवटें अपने बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं और जो कुछ हमने इनको दे रखा है वो खर्च करते हैं। फला तआलमु नफ्सुम मा अख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, कोई नफ्स नहीं जानता जो कुछ हमने इनकी आंखों की ठंडक इनके लिए पोशीदा कर रखी है। सरप्राइज गिफ्ट्स हैं जन्नत में आपके लिए। सरप्राइज किस्म की नेकियां कर लीजिए, हिडन नेकियां कीजिए, इखलास में कीजिए, छुप के काम कीजिए, पीछे रहिए, सेल्फ प्रोजेक्शन को खुरच कर दिल से निकाल दीजिए। देखिए अल्लाह आपको क्या कुछ देने वाला है। कोई नफ्स नहीं जानता, किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, किसी दिल पे ख्याल नहीं आया जो अल्लाह ने जन्नतियों के लिए जन्नत में तैयार किया। वजह, जो कुछ करते थे ये इसका बदला है, अल्लाह करने वाला बना दे। क्या वो जो मोमिन हो मिसल इसके वो जो फासिक हो, बराबर हैं? नहीं। कैसे बराबर है? लाइफस्टाइल फर्क, खाना पीना फर्क, टाइम स्पेंड करना फर्क, तो कैसे दोनों मरते ही जन्नत में चले जाएं? जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक अमाल भी किए इनके लिए मेशकी वाली जन्नतें हैं, मेहमानदारी है इनके अमाल के बदले जो ये करते रहे। अल्लाह आज कुछ करवा ले तो कल ये बदले भी हमें मिल जाएं। लेकिन जिन लोगों ने हुक्म न माना इनका ठिकाना दोजख है, जब कभी इससे बाहर निकलना चाहेंगे इसी में लौटा दिए जाएंगे। वो लोग जो सोशल मीडिया से न्यूडिटी और गंदगी और उरियानी और फहाशी फैलाते हैं उनको इस आयत को जानना चाहिए और कह दिया जाएगा कि अपने जुटलाने के बदले आग का अजाब चखो। बिल यकीन हम इन्हें करीब के छोटे से बास अजाब इस बड़े अजाब के सिवा चखाएंगे ताकि वो लौट आए, जैसे आजकल ये लॉकडाउन चखाया जा रहा है। ये दुनिया की छोटी छोटी पकड़ उस बड़ी पकड़ से बचाने का एक जरिया होती है। दुनिया के अजाब, दुनिया की पकड़ उन लोगों के लिए रहमत है जो इसके बाद खुद को पकड़ लें, अपने नफ्स को पकड़ लें। तो क्या देखा है 17 से 21 में? मोमिन और फासिक बराबर नहीं हो सकते। मोमिन तो अल्लाह की मानता है जबकि फासिक खुलेआम मुआशरे में लाहुल हदीस को आम करता है, और फासिकीन को इनके फिस्क के जुर्म में जहन्नम में बदतरीन अजाब दिया जाएगा जबकि मोमिन का अंजाम जन्नत होगा जहाँ इसकी बेहतरीन मेहमान नवाजी की जाएगी। और अल्लाह से अच्छी मेहमान नवाजी कौन करेगा? और इसके बरक्स वो लोग जो अल्लाह ताला पर झूठ करते हैं, वह मन असलम मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयाति रब्बिही सुम्मा रद्दा अन्हा, इससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे अल्लाह की आयतों से बाज किया गया फिर भी इसने इनसे मुंह फेर लिया। यकीन जानो कि हम भी गुनाहगारों से इंतकाम लेने वाले हैं, बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, बस आपको हरगिज़ इसकी मुलाकात में शक नहीं करना चाहिए, और हमने उसे बनी इसराइल की हिदायत का जरिया बनाया फिर भी ना मान सके। किताबें तो अपने दौर में हिदायत की बात ही करती हैं। तो देखिए आयत 22, फितनों में मुबतला गाफिल लोगों के लिए अल्लाह का कानून है। पहली बात, मोमिन और फासिक बराबर नहीं। बड़े अजाब से पहले दुनिया में छोटे छोटे अजाब आते हैं, जो अल्लाह को भुलाएगा अल्लाह ताला रोज़े क़यामत उसे भुला देंगे। अल्लाह बुरे अंजाम से बचाए। इसके बरक्स कुछ ऐसे खूबसूरत लोग जिनकी बात की जा रही है इसमें, वजअलना मिन्हुम अइम्मतन यहदून बिअम्रिना लम्मा सबरू, और जब इन लोगों ने सब्र किया तो हमने इनमें से ऐसे पेशवा बनाए जो हमारे हुक्म से लोगों को हिदायत करते थे और हमारी आयतों पर यकीन रखते थे। क्या पता चला कि जब लोग सब्र करते हैं तो उनको अच्छे लीडर्स मिल जाते हैं। आ मालुकुम ओ मालुकुम वाली बात, आपका रब इन सब के दरमियान इन तमाम बातों का फैसला क़यामत के दिन करेगा जिनमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं। यानी आज बैसे करने वाले अपनी जुबानों को दबा लें, अल्लाह ने कल सब कुछ खोलकर सामने ले ही आना है, तो आपको ज्यादा वक्त जाया करने की जरूरत नहीं इन बहसों में। क्या इस बात ने भी इन्हें कोई हिदायत ना दी कि हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतों को हलाक कर दिया जिनके मकानों में ये चल फिर रहे हैं? इसमें तो बड़ी बड़ी निशानियां हैं, क्या फिर भी ये नहीं सुनते? क्या ये नहीं देखते कि हम पानी को बंजर जमीन की तरह बहा कर ले जाते हैं, फिर इससे हम खेतियां निकालते हैं जिससे इनके चौपाए और ये खुद खाते हैं? क्या फिर भी ये नहीं देखते और कहते हैं कि ये फैसला कब होगा? अगर तुम सच्चे हो तो बतलाओ। जवाब दे दो कि फैसले वाले दिन ईमान लाना बेईमानों को कुछ काम ना आएगा और नए नए ढील दी जाएगी। अब आप इनका ख्याल छोड़ दे और मुंतजिर रहें। वंतजिरिन नहुम मुंतजिरून, ये भी मुंतजिर रहें और हम भी मुंतजिर हैं। तो ये है सूरह सजदा। चंद बातों पे गौर कीजिएगा, क्या सीखा? हर एक की नकेल अल्लाह जल्ला जलालहू के हाथ में है। ना अकबत अंदेशो, अब खमियाजा भुगतो। सारी ज़िंदगी की मौज मस्ती के बाद अगर आखिरत ख़राब हो गई तो क्या फ़ायदा? ईमानदार वही है जिसके अमाल कुरान पाक के ताबे हों। दरियाए नील के नाम हज़रत उमर ने एक दफ़ा ख़त लिखा था, कह दरिया तू भी अल्लाह के हुक्म से बहता है और ये भी अल्लाह का हुक्म है, अगर तो अल्लाह के नाम पे बहता है तो चल पड़। क्योंकि लोग एक दोशीज़ा को डालते थे हर साल अपने गुमान के मुताबिक के वो भेंट चढ़ाएंगे फिर दरियाए नील में पानी आएगा। जब हज़रत उमर वहाँ पहुँच गए फतुहात करते हुए तो उन्होंने कहा मैं तो ये शिर्क नहीं करूँगा। तो उन्होंने दरियाए नील को ख़त लिखा था कि अगर बहना है तो अल्लाह के नाम पे बह। तो उसके बाद से आज तक दरिया नहीं रुका। ये सीखा है आपने, मैंने, अल्लाह के नाम पे रहिए, शिर्क और तवहम परस्ती को निकाल दीजिए और नाफरमान अपनी बर्बादी को दावत देता है। अब है आगे सूरत अलासाब, जो फिर अगले पारे में भी चलेगी। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी की जंगों में से एक जंग, आप देख रहे हैं कहीं किसी सूरत में जंग का नाम है? सूरत अहज़ाब अब गज़वा हसाब के नाम पे है, हालांकि बदर नाम की सूरत नहीं है, ओहद नाम की नहीं, क्योंकि इसमें एक खंदक खोदी गई थी। बिलीव मी, गज़वा अहज़ाब को अगर आप पढ़ लेना तो इसमें आपको दो सवालों का जवाब, जो वेस्ट में सोशल मीडिया के जरिए लोगों के जहनों में डाली जा रही है, एक है वॉर्स ऑफ द प्रॉफिट और एक है वाइब्स ऑफ द प्रॉफिट। यानी दो प्रोपेगंडा सोशल मीडिया पे आम है, अल्लाह के नबी ने इतनी शादियाँ क्यों की और आपने इतनी जंगें क्यों लड़ी, और जंग के जरिए तलवार के जरिए इस्लाम पे लाया, ये सूरत उसी का तोड़ है। 33 नंबर की सूरत है, 73 आयात हैं, और अल्लाह के नबी ने अपने अस्हाब के साथ मिलकर मदीना के अतराफ़ में खंदक खोदी थी ताकि दुश्मन फौजें आ ना सकें। आज आपको मुझे ज़हनी खंदकें खोदनी पड़ेंगी अपनी जवान नस्लों को गैरों के अफकार से बचाने के लिए। बहुत बड़ा काम है इसमें, अल्लाह ताला आपकी मेरी मदद फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबी युत्तकिल्लाह वला तुतील काफिरीन वल मुनाफिकीन इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। बिल्कुल सूरत नूर की तरह इसका डायरेक्ट अंदाज है, क्योंकि सूरत अंजुजल है तो अंदाज भी अंजुजल है, और इसमें उस दौर के ख़ास तौर पर मुआशरे के वो रस्म व रिवाज टूटते दिखेंगे जो आज भी हमारी गर्दनों में तौक बन के डले हुए हैं। किसी मुआशरे में जब ख़ानदानी रस्म व रिवाज के नाम पर चीज़ें आम हो जाएँ तो लोग सारा कुरान पढ़ पढ़ा भी लेते हैं, लेकिन फिर मवाक़े जब आते हैं तो रस्म व रिवाज के पाबंद बने होते हैं। इस सूरत में इंशाल्लाह मैसेज यही मिलेगा कि आपने मैंने वक्त के रिवाज से कट के अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पे जीना है। ऐ नबी, अल्लाह ताला से डरते रहिए और काफिर और मुनाफिकों की बातों में ना जाइए। अल्लाह ताला बड़े इल्म वाले और बड़ी हिकमत वाले हैं। जो कुछ आपकी जानिब आपके रब की तरफ से वही की जाती है इसकी ताबेदारी करें। यकीन मानो कि अल्लाह ताला तुम्हारे हर एक अमल से बाखबर है। बज़ाहर कहा अल्लाह के नबी को जा रहा है, पैगाम हमें दिया जा रहा है कि माशरे से ना डरो, ख़ानदान से ना डरो, बिरादरी को बुत ना बनाओ, बल्कि क्या आप अल्लाह पर ही तवक्कुल रखें, वो कारसाजी के लिए काफ़ी है। यानी लोग अमूमन कहते हैं ख़ानदान की बात ना मानी तो क्या होगा, फिर अलग रह जाएंगे, बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं गलत चीज़ों में उनकी नहीं माननी, मैं तुम्हारे लिए काफ़ी हूँ। माँ चल अल्लाह रजुल मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़िह, किसी आदमी के सीने में अल्लाह ताला ने दो दिल नहीं रखे। और अपनी जिन बीवियों को तुम माँ कह बैठते हो, इन्हें अल्लाह ने तुम्हारी सचमुच की माँ नहीं बनाया। यानी मुंह बोले बेटों, मुंह बोले भाइयों का तसव्वुर इस्लाम में नहीं है। महरम महरम है, गैर महरम गैर महरम है, चाहे आप किसी को कहें तुम तो मेरा बेटा हो और तुम तो मेरे भाई हो, और भाई बना लिया, बहन बना लिया, इस्लाम इन चीज़ों को कतन नहीं मानता। और न तुम्हारे ले पालक लड़कों को बाकी तुम्हारे बेटे बनाया, ये तो तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं। अल्लाह ताला हक बात फरमाता है और वो सीधी राह सुझाता है। जैद बिन हारिसा को लोग जैद बिन मोहम्मद कहते थे, अल्लाह ताला ने इधर से ये कॉन्सेप्ट ख़त्म किया। याद रखिए अडॉप्शन इस्लाम में पसंदीदा नहीं है, इल्ला ये कि बड़े एडवर्स हालात हो, लेकिन उस सूरत में भी बच्चे का नसब नहीं बदलेंगे। उसको पता होगा उसके साथ बाप का नाम लगेगा, क्योंकि क़यामत के दिन लोग अपने बापों के नाम से आएंगे। एक बड़ी दिलचस्प बात देखिए, एक पेट में दो दिल नहीं बनाए। मदीना में एक शख्स था, वो कहता था कि मेरे दो दिल हैं, एक में अल्लाह के नबी की मोहब्बत है अल्लाह की, और दूसरे में माशरे की। तो उस पर उतरा, लेकिन अगर आज इसको साइंटिफिकली देखें तो ये कुरान के मौजज़े होने की दलील है। यहाँ उस रजुल आया, रजुल आदमी को कहते हैं, मर्द को। यहाँ ये नहीं कहा गया कि किसी इंसान के पेट में दो दिल नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि औरत के कुछ दिन ऐसे गुजरते हैं कि उसके जिस्म में दो दिल होते हैं, एक अपना और एक बेबी का, फीटस, प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ रजुल लफ्ज़ कहकर ये बता दिया कि मर्द के साथ ये मुमकिन नहीं, मतलब है कि मर्द कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकेगा चाहे दुनिया कितनी भी कोशिशें कर ले। और आज लोग इन कोशिशों में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ले पालकों को इनके हकीकी बापों की तरफ निस्बत करके बुलाओ, अल्लाह के नज़दीक पूरा इंसाफ यही है। फिर अगर तुम्हें इनके हकीकी बापों का इल्म ही ना हो तो वो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं, तुमसे भूल चूक में जो कुछ हो जाए इसमें तुम पर कुछ गुनाह नहीं, अलबत्ता गुनाह वो है जिसका तुम इरादा दिल से करो, अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला है। नस्ब की इस्लाम में इतनी अहमियत है, इसीलिए तो जिना हराम है, और इसीलिए आप देखिए कि बाप का नाम तो बहरहाल लगेगा। पैगंबर मोमिनों पर खुद इन से भी ज्यादा हक रखने वाले हैं, सोचिए इसको, क्या हम अल्लाह के नबी का ये हक मानते हैं? और पैगंबर की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं, ये है उनका अज़वाज मुतहरात का लकब। और रिश्तेदार किताबुल्लाह की रूह से बनिस्बत दूसरे मोमिन और महाजरों के आपस में ज्यादा हकदार हैं। हाँ, मगर ये कि तुम अपने दोस्तों के साथ हुस्ने सलूक करना चाहो, ये हुक्म किताब इलाही में लिखा हुआ है, जबकि हमने तमाम नबियों से अहद लिया और बिलखसूस आपसे और नूह से और इब्राहिम से और मूसा से और मरियम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम से, और हमने इनसे पक्का और पुख्ता अहद लिया ताकि अल्लाह सच्चों से इनकी सच्चाई के बारे में दरियाफ्त करे। और काफिरों के लिए हमने अलमनाक अजाब तैयार कर रखा है। पता क्या चला कि अगर अम्बिया कराम को इज्जत और ऑनर मिली, लेकिन उनके ऊपर पाबंदियाँ भी हैं, रूल्स उनको भी मानने पड़ते हैं। जो इंसान जिस बड़ी जिम्मेदारी पर डाल दिया जाए उसको उतना संजीदा और फोकस्ड हो जाना चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अल्लाह ने जो एहसान तुम पर किया इसे याद करो, जबकि तुम्हारे मुकाबले को फौजों पर फौजें आईं, फिर हमने इन पर तुंदो तेज आंधी और ऐसे लश्कर भेजे जिन्हें तुमने नहीं देखा, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला सब कुछ देखता है, जबकि दुश्मन तुम्हारे पास ऊपर से नीचे से चढ़ाए, और जबकि आंखें पथरा गईं और कलेजे मुंह को आ गए, और तुम अल्लाह ताला की निस्बत तरह तरह के गुमान करने लगे। यह है गज़वे खंदक या अहज़ाब। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बहुत आजमाया, जिन मुसलमानों यानी सहाबा कराम और अल्लाह के नबी ने सख्त मेहनत करके खंदक खोदी, अल्लाह ने उनकी मदद की, दुश्मनों के मुकाबले में शदीद आंधी भेजी, उनमें फूट डाल दी, और ना नजर आने वाले लश्कर भी भेजे यानी फरिश्ते भेजे। आज जो मुसलमान फिस्क व फजूर में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं और दूसरे मजलूम मुसलमानों की मदद करने के लिए भी आगे नहीं आते, क्या फिर उनके लिए भी अल्लाह की मदद आएगी? और वहाँ खंदक खुदी, पेट पे पत्थर बंधे। देखिए, जब हम कुछ अरसा नहीं खाते तो वीकनेस होती है ना, मगरिब से पहले का वक्त देख लीजिए, उस वक्त अगर खंदक खोदनी पड़े तो क्या बने? अल्लाह अकबर, हमें उस वक्त इफ्तारी बनानी मुश्किल लग रही होती है। आप देखिए कि ये दीन पेट पे पत्थर बांध के फैला, एक सहाबी के पेट पे एक पत्थर तक, अल्लाह के नबी अब और कब तक? तो आपने पेट से कपड़ा उठाया, वहाँ दो पत्थर थे। क्या आज हमें भी माँ और बापों को पेटों पे पत्थर नहीं बांधने पड़ेंगे? हम तो शायद बेल्टें बांध कर पेट अंदर घटाते हैं कि अंदर हो भाई, लॉकडाउन के दिन है, बाहर आना मना है। हम तो ऐसे जोक करें और उन्होंने हकीकत में पेट पे पत्थर बांधे, तो एक नस्ल को तो कम अज़ कम ये करना पड़ेगा, फिर दीन के पौधे पे बहार आएगी। यही मोमिन आजमाए गए और पूरी तरह झंझोड़ दिए गए, और इस वक्त मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में शक का रोग था कहने लगे, अल्लाह ताला और उसके रसूल ने हमसे महज धोखा फरेब का ही वादा किया था। नाउज़ुबिल्लाह, मुनाफिक हर जगह बदगुमानियाँ और शक डाले, वो किसी की तारीफ थोड़ी सुन सकता है, कोई कर भी ले ना कहते नहीं नहीं ऐसा भी नहीं वैसा भी नहीं, तो वही अंदाज इधर दिख रहा है। और जहाँ जंगों की बात वहाँ निफाक का तस्करा। इन्हीं की एक जमात ने हाँक लगाई, कह मदीना वालों तुम्हारे लिए ठिकाना नहीं, चलो चलो लौट चलो। और इनकी एक जमात ये कहकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त मांगने लगी, हमारे घर गैर महफूज हैं, हालांकि वो खुले हुए और गैर महफूज नहीं थे, लेकिन इनका पुख्ता इरादा भाग खड़े होने का था। कुछ बोलूँ इस पे? आजकल तो घरों में ही सुन रहे हैं ना, लेकिन अमूमन जब दीन का कोई तकाजा आए तो घर एक बहुत बड़ा पत्थर बन जाता है हमारे अल्लाह के रास्ते में निकलने का। रुकावटें तो इन्हीं घरों में तो नहीं रहना, इधर से एक दिन जनाजा उठेगा, पता नहीं घर से कि हॉस्पिटल से, ज़रा सा सोचिए। अल्लाह ने इन घरों को पुरसकून रहने का जरिया बनाया था, हमने इसको अल्लाह से दूर रहने का जरिया बना लिया। इतना लाहुल हदीस घर में आ गया कि फिर अल्लाह की बात की ना जगह रही ना वक्त बचा। और अगर मदीने की तरफ से इन पर लश्कर दाखिल किए जाते, फिर इनसे फितना तलब किया जाता, तो ये ज़रूर इसे बर्पा कर देते और ना लड़ते मगर थोड़ी मुद्दत। इससे पहले तो उन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि पीठ न फेरेंगे, हम भी बार बार करते हैं फिर पलट जाते हैं, और अल्लाह ताला से किए हुए वादे की बाज़ बरस होगी। तो जो कमिटमेंट्स की थी, नियतें की थी, खुद याद कीजिए, वरना बहुत बड़ी सख्ती आएगी इसके बाद, अगर आप दोबारा हम उन्हीं चीज़ों में लौट गए जिसमें इस लॉकडाउन से पहले थे। कह दीजिए कि तुम मौत से या खौफे कत्ल से भागो, तो ये भागना तुम्हें कुछ भी काम ना आएगा, और इस वक्त तुम बहुत ही कम फ़ायदा उठाओगे। पूछिए, अगर अल्लाह तुम्हें कोई बुराई पहुंचाना चाहे या तुम पर कोई फजल करना चाहे, तो कौन है जो तुम्हें बचा सके या तुमसे रोक सके? अपने लिए सिवाय अल्लाह ताला के ना कोई हिमायती पाएंगे ना मददगार। आज की माँ को पेट पे पत्थर बांध के दिखाना है बच्चों को। देखिए, आप माल के पीछे भागते हैं, आप क्यों नहीं वो माएँ बनती जो खुद भी पेट काटें और बच्चों के भी काटें? एक जुमला हम पुरानी किताबों में पढ़ते थे, उन्होंने पेट काट काट कर बच्चों को पाला। आज बच्चों की आरजुएं काट दीजिए, उनकी जड़ें काटिए। आजकल के दिन बेस्ट तरीके से उनको समझाने के, बाहर के मादा परस्ती और मटीरियलिज्म के फितने से बचे हुए हैं इस वक्त, बाहर की नेगेटिव एजुकेशन से रुके हुए हैं। आज अगर आप ये काम कर जाएं, देखिए आप इसके बाद कितनी बड़ी चेंज अपने और उनमें देखें। और अगर इधर से निकल कर फिर दोबारा उसी दुनिया में धक्के खाने हैं, तो फिर जो जाता है शौक से जाए, अभी शौक पूरा नहीं हुआ, मजीद शौक पूरा हो जाएगा। यही चीज़ें उस जंगों में डालकर निफाक वाले दिलों को सिखाई जाती थी कि अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारा मोहताज नहीं है। अल्लाह ने इतने थोड़े लोगों से मदीना का दिफा करा लिया था कि मक्का वाले तो तसव्वुर नहीं कर सकते थे। अल्लाह ताला तुम में से इन्हें बखूबी जानते हैं जो दूसरों को रोकते हैं और अपने भाई बंदों से कहते हैं कि हमारे पास चले, और कभी कभी ही लड़ाई में आ जाते हैं। ये हैं डिस्ट्रैक्शंस, बुरे दोस्त, बुरी फ्रेंडशिप। सोचिए मेरी कौन सी दोस्त है जो मुझे इस कुरान के करीब नहीं आने देती? तुम्हारी मदद में पूरे बखील है, कभी माल न लगाएंगे, बातें बड़ी छांटते हैं, फिर जब कभी खौफ व दहशत का मौका आ जाए तो आप इन्हें देखेंगे, आपकी तरफ नजरें जमा देते हैं और इनकी आंखें इस तरह घूमती हैं जैसे इस शख्स की जिस पर मौत की गशी तारी हो। यानी जिसको कहते हैं ना कि मौत का पैगाम लगता है उनको दीन का काम, अल्लाह के दीन का दिफा। फिर जब खौफ जाता रहता है तो तुम पर अपनी तेज जबानों से बड़ी बातें बनाते हैं, माल के बड़े ही हरीस हैं, ईमान लाए ही नहीं। अल्लाह ताला ने इनके तमाम अमाल नाबूद कर दिए हैं, और अल्लाह ताला पर ये बहुत आसान है। इससे ज्यादा मुनाफिक के लिए क्या कुरान में आएगा? समझते हैं कि अब तक लश्कर चले नहीं गए, और अगर फौजें आ जाएं तो तमन्नाएं करते हैं कि काश वो सहरा में वादिया नशीनों के साथ होते, कि तुम्हारी खबरें दरियाफ्त किया करते, यानी दूर बैठ के खबरें सुनते। मैदान अमल में कूदने वाले ये लोग हैं ही नहीं। अगर वो तुम में मौजूद होते तो भी क्या ना लड़ते, मगर बराए नाम। यानी नहीं आने पे इनके घबराओ, नहीं आते तो दिल तो इनका काम में अब है नहीं, आके भी आधे दिल और अधूरे दिल से क्या तीर मार के जाएंगे। याद रखिए, पूरे दिल से काम कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, वरना आप कभी अपने आप को माफ़ नहीं करेंगे और अल्लाह का दीन भी आपको माफ़ नहीं करेगा कि आपकी गैर जिम्मेदारियों की वजह से दीन का नुकसान हो जाए। लकत का नलकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये है प्यारी आयत जो आपको मुझे जमा देती है, और हमें किसी को नहीं देखना, हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल हमारे रसूल। यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह में मौजूद नमूना है हर उस शख्स के लिए जो अल्लाह ताला की और क़यामत के दिन की तवक्को रखता है और बकसरत अल्लाह ताला की याद करता है। और ईमानदारों ने जब कुफार के लश्करों को देखा तो बेसाख्ता कह उठे कि इन्हीं का वादा हमें अल्लाह ने और इसके रसूल ने दिया था, और अल्लाह ताला और उसके रसूल ने सच फरमाया, और इस चीज़ ने इनके ईमान में और शेवा बरदार फरमा बरदारी में इजाफा किया। याद रखिए, दीन के नाम पे मुश्किलात आती हैं तो मुनाफिक पुकार उठता है, हाय मुसीबत आ गई, और मोमिन कहता है, हाय नेकी कबूल हो गई। याद रखिए, जैसे अल्लाह ताला ने ईमान वालों के साथ जन्नत का वादा किया है, इसी तरह उनके साथ मुश्किलात का वादा भी किया है। तो मोमिन मुश्किलात में खुश होता है कि सही इंस्टॉलमेंट आई। जैसे आप कोई सौदा कर लें तो उसकी किस्तें देनी पड़ती हैं ना, तो अल्लाह के रस्ते की मुश्किलात इंस्टॉलमेंट्स ऑफ जन्ना है। इसके बरक्स मुनाफिक ऐसे वक्त में फितने फैलाता है। तो अल्लाह के नबी कैसे उसवे हसन है हमारे लिए और हमसे क्या मतलूब है? देखिएगा आयत 21 में, पहली बात है कि अल्लाह के नबी के हर उसवे पे अमल करना है, हर तरीका, बाप, भाई, बेटा, शौहर, जरनेल, उस्ताद, लीडर, इमाम, हर रंग में आप हैं। और इस पे रहबरे कामिल नाम की एक बड़ी प्यारी किताब कोर्सेज में पढ़ाई जाती है। अल्लाह के नबी के डिफरेंट 19 एंगल्स हैं जो हमारे लिए एक उसवे हसन है। फिर इस तरह अल्लाह ताला से मुलाकात और क़यामत को नहीं भुलाना, और अल्लाह ताला का जिक्र कसरत से करना है। अल्लाह ताला में इसकी तौफीक दे। मोमिनों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो अहद अल्लाह ताला से किया था इन्हें सच्चा कर दिखाया। अल्लाह आपको मुझे इनमें शामिल कर ले, जो कहें उससे ज्यादा करके दिखाएं, कमिट लेस एंड डू मोर। बास ने तो अपना अहद पूरा कर दिया और बास मौके के मुंतजिर हैं और उन्होंने कोई तब्दीली नहीं की, यानी हालात बदल गए लेकिन उनकी नीयतें नहीं बदली। जिस तरह पहले जमे हुए ठुके थे इसी तरह भी हैं, ताकि अल्लाह ताला सच्चों को इनकी सच्चाई का बदला दे, अगर चाहे तो मुनाफिकों को सजा दे और या इनकी तौबा कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला बड़ा ही बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और अल्लाह ताला ने काफिरों को गुस्से में भरे हुए ही नामुराद लौटा दिया और उन्होंने कोई फायदा नहीं पाया। और इस जंग में अल्लाह ताला खुद ही मोमिनों को काफी हो गया। अल्लाह ताला बड़ी कुव्वतों वाला और गालिब है। अल्लाह आज तो हमें भी काफी हो जा, हमारे रिसोर्सेस को ना देख, हमारी कमियों को ना देख, तो अपनी रहमत से हमारे कामों के पीछे अपनी मुआवनत शामिल कर दे। और जिन अहले किताब ने इनसे साज बाज कर ली थी, इन्हें भी अल्लाह ताला ने इनके कलों से निकाल दिया और इनके दिलों में ऐसा रोह भर दिया कि तुम इनके एक गिरोह को कत्ल कर रहे हो और एक गिरोह को कैदी बना रहे हो। बनू कुरैज़ा की तरफ इशारा है, जिन्होंने गद्दारी की थी इस जंग में। और इसने तुम्हें इनकी ज़मीनों को और इनके घरों को और इनके माल का वारिस कर दिया, और इस ज़मीन का भी जिसको तुम्हारे कदमों ने रौंदा नहीं। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। अब इस जंग में वैसे तो माल गनीमत मिला कोई ना, दुश्मन खंदक के पार आए और वहीं से चले गए, उनके तो अपनी रोजी रोटी बंद हुई, सब खत्म हुआ। लेकिन अल्लाह ने बनू कुरैज़ा के कले माल गनीमत में दे दिए, जिन्होंने गद्दारी की। अल्लाह के नबी ने उनको अल्टीमेटम दिया, वो सब छोड़ छाड़ के चले गए। तो याद रखिए, आप सच्चे दिल से बगैर किसी लालच के अल्लाह की तरफ आइए, दुनिया इतनी मिल जाएगी जिसकी आपको परवाह नहीं होगी। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया की जिंदगी और दुनिया की जीनत चाहती हो तो आओ मैं तुम्हें कुछ दे दिला दूं और तुम्हें अच्छाई के साथ रुख्सत कर दूं। और अगर तुम्हारी मुराद अल्लाह और उसका रसूल और आखरत का घर है तो यकीन मानो तुम में नेक काम करने वालियों के लिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़े अजर छोड़े हैं। ऐ नबी की बीवी, और तुम में से जो भी खुली बेहयाई का इर्तिकाब करेगी इसे दोहरा दोहरा अजाब दिया जाएगा, और अल्लाह के नज़दीक ये बहुत ही सहल सी बात है। जब माले गनीमत मिला बनू कुरैज़ा का और बाद में जाके खैबर में, तो सहाबियात तो थी, सहाबा थे, उनके घर के चूल्हे जल गए, लेकिन नबी के घर में अभी भी दो दो माँ चूल्हा नहीं जलता था। तो बीवियों ने कोई एक्स्ट्रा नहीं, सिर्फ ये कहा कि हमारा पॉकेट मनी भर जाए, हम अल्लाह के नबी के लिए कुछ अच्छा पका लें। उस पर यह आयात उतरी, अगले पारे में इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे, क्या सीखा इस बारे में, और ख़ास तौर पर आखिर में सूरत अहज़ाब की आयात में, सच बदल नहीं सकता, ले पालक बेटा अपना नहीं बन सकता। जिहाद से मुंह मोड़ने वाले ईमान से खाली होते हैं, तकमील ईमान की ज़रूरी शर्त के लिए कोशिश लाजमी है, और इस दिन मोमिनीन और मुनकरीन में फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। और ख़ास तौर पे उम्महातुल मोमिनीन से जो बास बुरस की गई कि दुनिया या दीन, तो उन्होंने उसमें दीन को चुना, अल्लाह के नबी को चुना। जेम्स ले लीजिए चंद, लाहुल हदीस एक फितना और गुमराही है, शिर्क से परहेज़ करना है, नमाज जिंदा हो तो फुहश और मुनकर से बचाती है, अल्लाह की निशानियों पे गौर व फिक्र करना है, नेमतों पे शुक्र करना है, बच्चों की अच्छी तरबियत करनी है, सूरह लुकमान में सीखा, और अल्लाह के नबी को बेहतरीन उसवे हसना समझना है। फितना तो बहुत बड़ा था, उसका हल भी है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। सोशल मीडिया का मिसयूज़ कैसे रुके, कैसे लाहुल हदीस से बचे, तो पहली बात है कि इसको मानिए कि लाहुल हदीस एक फितना और गुमराही है और इसके मुजिर असरात हैं, इसके बारे में इल्म लीजिए। और जो लख्व इंसान को कुफर, हराम और कबीरा गुनाहों तक ले जाए, इसे इज्तनाब कीजिए। बस जब ऐसी ऐसी चीज़ें फिल्मों ड्रामों में दिखाई जाती हैं जो कबीरा गुनाहों तक ले जाएं, लेकिन चूंकि वो एक अच्छी स्क्रीन से आ रही हैं तो लोग उसको बुरा नहीं समझते। बच्चों को ये एहसास दिलाइए कि ये गलत चीज़ें हैं, ये समझना कि दीन इस्लाम तफरीक का दुश्मन नहीं और हर उस तफरीक की इजाज़त देता है जिससे इंसान फितरत के मुताबिक लुत्फ़ उठा सके, और वो लफ्ज़ जिससे वक्त, पैसे और तवानाई ज़ाया हो इसे भी छोड़ देना है। मोहलत ज़िंदगी की कदर करनी है, इसे लख्वल हदीस में ज़ाया नहीं करना। लाहुल हदीस में खोकर हकूकुल्ला और हकूकुल इबाद और मकसद हयात से गफलत नहीं बरतनी। लाहुल हदीस की बजाय कुरान को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना है और सुहबते सालहीन इख्तियार करनी है। लाहुल हदीस की बजाय बेहतर मशागिल अपनाने हैं, जैसे घुड़सवारी, तैराकी, अच्छी कुतुब का मुताला। और इस फितने से बचाने के लिए वालदैन को, उलमाए कराम को और हुकूमत वक्त को अपना किरदार अदा करना। घरेलू और हुकूमती सतह पर इंटरनेट पर तफरीक के नाम पर खुराफात पर पाबंदी लगानी चाहिए। माँ बाप को औलाद की बेहतरीन तरबियत करनी है, खुद को और औलादों को इस फितने से बचाने के लिए उसवे हसना पे अमल करना है। अल्लाह ताला आपको मुझे इन सारे मामलात में अमल वाला बना दे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम, व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम, व सल्लल्लाहु ताला खैरी खल्क़िही व असहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। جزاكم الله خير واحسن الجزاء.